ओम शांति। सभी प्यार से बोले ओम शांति। एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोले ओम शांति। आज के इस मेडिटेशन कम रिट्रीट कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि अरावली पर्वत माला के गोद में बसा माउंट आबू के सुंदर से शांत, सौम्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर ये सुंदर सा परिसर ज्ञान सरोवर है। मैं आशा करती हूँ यहाँ पहुंचकर आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। जिनको अच्छा लगा एक बार हाथ खड़ा करिएगा। ओके, आप में से जो पहली बार इस परिसर में आए हैं वो जरा हाथ खड़ा करिएगा। वाह, बहुत अच्छा। यहाँ के वातावरण में जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, मैं आशा करती हूँ अगले चार दिनों में आप इसका भरपूर लाभ लेंगे। आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करें इससे पहले मैं चार दिन की दिनचर्या कैसी रहेगी आप सभी को बताना चाहूंगी। प्रतिदिन की दिनचर्या सुबह 4 बजे से प्रारंभ होगी। आप में से बहुत लोगों के लिए सुबह 4 बजे उठना शायद जीवन में पहली बार का ही अनुभव होगा, लेकिन यहाँ का वातावरण आपको सुबह जल्दी उठने में बहुत बहुत मदद करेगा, क्योंकि यहाँ के सैकड़ों भाई बहने जो यहाँ पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं, प्रतिदिन उनकी दिनचर्या सुबह 3 बजे 3:30 बजे शुरू हो जाती है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति और यहाँ का सकारात्मक वातावरण आप सभी को सुबह जल्दी उठने में बहुत बहुत मदद करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कल से आप सबकी दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होगी। जो सहमत है हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। वाओ। उसके पश्चात आप सभी के लिए आपके फिजिकल फिटनेस के लिए एक बहुत सुंदर योगा सेशन का आयोजन किया गया है जो यही हार्मनी हॉल में मॉर्निंग 5:45 शुरू होगा और उसके बाद सुबह 7 से 8:15 बजे तक राजयोग मेडिटेशन सेशंस आयोजित होंगे प्रतिदिन। यहाँ की जो मूल ज्ञान आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है और कैसे हम परमात्मा से ध्यान लगाएं जिससे हम अपनी इनर मास्टरी को एश्योर कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप सभी सहमत होंगे कहने के लिए आंखें हमारी हैं परंतु आंखें हमारे नियंत्रण में है कि नहीं है। देखिए सभा में से जवाब मिल रहा है नहीं है। जुबान हमारी है लेकिन क्या जुबान हमारे कंट्रोल में है? सभा में से बहुतों से जवाब आ रहा है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी मास्टरी को खो दी है। तो ये 4 दिन के सेशंस आपको मदद करेंगे अपनी उस खोई हुई मास्टरी को पुनः वापस लाने के लिए। हमारे अंदर एक लीडर छिपा हुआ है, उस लीडर को पहचानना और उस लीडर को जगाना बहुत 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 आवश्यक है। इसके कारण आज का ये जो सत्र है इसका नाम रखा है अवेकनिंग द इनर लीडर। आप में से ऐसे कोई बैठे हैं जिनको फाइल न मिला हो, प्रोग्राम बुकलेट न मिला हो, जरा हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। अच्छा, जो विंग के इस कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट के रूप में आए हुए हैं उनमें से यदि किसी को फाइल न मिला हो और प्रोग्राम बुकलेट न मिला हो तो वो हाथ खड़ा करिए। सेवाधारी या बीके गाइड्स हैं तो और बात है, पर डेलीगेट्स कोई आए हैं और आपको बैच न मिला हो, फाइल न मिला हो तो एक बार हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। सबको मिल गया, टू गुड। उसमें एक प्रोग्राम बुकलेट रखा है, आप उस बुकलेट में जैसे जैसे प्रोग्राम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करते रहिएगा। कल सुबह 9:15 को एक बहुत सुंदर सत्र है हमारे बहुत ही एलोकेंट मोटिवेशनल स्पीकर स्वामीनाथन भाई जी का, वो सत्र है 9:15। तो सुबह आप 4 to 4:45 यहाँ मेडिटेशन के लिए आएंगे। उसके पश्चात आप अपने कमरों में जाएंगे, आप फ्रेश होके फिर योगा सेशन के लिए आएंगे 5:45, और उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पे राजयोग शिविर के सत्र चालू रहेंगे। 8:15 आप सभी ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे और 9:15 आप सेशन के लिए यहाँ पहुंचेंगे, और कल 10:30 इनॉगुरल सेशन प्रारंभ होगा। और उसके बाद जैसे जैसे आपके शेड्यूल में लिखा है, शाम को दोपहर को 2:00 कार्यक्रम पूरा होने के पश्चात आप सभी विश्राम के लिए थोड़ा समय प्राप्त करेंगे, और विश्राम के पश्चात आप सभी को 4:30 बुकलेट में दिए हुए कार्यक्रम के अनुसार जहां पर आपको पहुंचना है, जो वेन्यू मेंशन्ड है, आपको वहां पर पहुंचना होगा। तो मैं आशा करती हूं कि आप सभी पूरे 4 दिन इस सुंदर से वातावरण में अपनी उपस्थिति को भरपूर एंजॉय करेंगे। यहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा है आप उसका भरपूर लाभ भी लेंगे। आज का सत्र हम शुरू करें उससे पहले मैं चाहूंगी एक छोटी सी एक्टिविटी करें। आर यू ऑल रेडी? तैयार हैं आप सभी? मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप सभी ध्यान से सुनिएगा, और प्रश्न के मुताबिक जहां पर आप फिट होते हैं तो जो एक्टिविटी आपको करने कही जाएगी आप वो एक्टिविटी जरूर करिएगा। आप में से जिनको व्हाइट कलर पसंद है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आपको पहले भी पसंद था, यहां आके पसंद होने लगा? अच्छा, पहले से ही पसंद था, चलिए बैठ जाइए। आप में से जिनको ब्लू कलर पसंद है वो ताली बजाइए। आप में से जिनको रेड कलर पसंद है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और थोड़ा राइट साइड मुड़ जाइए, राइट साइड मुड़ जाइए, ओके, बैठ जाइए। आप में से जिनका नाम ए से शुरू होता है वो खड़े होइए और कदम ताल करिए। जिनका नाम ए से शुरू होता है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और कदम ताल करिए। हाँ जी 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 जी, मैं भी आपकी ही लिस्ट में हूं। हाँ जी, बैठ जाइए। आप में से जिनका नाम एस से शुरू होता है, एस, वो एक बार खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। वाओ, टू गुड टू गुड। आप में से जिनका बर्थडे मई के महीने में आता है वो खड़े हो जाइए प्लीज। अच्छा अच्छा, आप एक ह्यूमन चेन बना लीजिए, सभी आगे आ जाइए और एक ह्यूमन चेन बना लीजिए। जिनका बर्थडे इस महीने में है प्लीज कम टू द फ्रंट, आ जाइए आ जाइए, और एक ह्यूमन चेन बना लीजिए। हाथ पकड़ लीजिए, एक ह्यूमन चेन बना लीजिए जी। संस्था की ओर से, साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग की ओर से आप सभी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। सभी इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप सभी अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ सकते हैं। अब एक बहुत लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप में से जिनको भी गुस्सा आता है वो मेरे साथ साथ ओम ध्वनि करिए। और आज इस मंच से जो हमने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से सीखा वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की बुराइयों को छोड़ते जाने में हमें मदद कर रही है। तो आज इस मंच से आप सभी के लिए यही ब्लेसिंग्स है कि आप जब यहां से जाएं तो आपका व्यक्तित्व एक बदला हुआ व्यक्तित्व हो, आपके भीतर एक गजब की शांति आ जाए और आपके अंदर का क्रोध धीरे धीरे शांत होता जाए। आप में से ऐसे तो कोई नहीं बैठे हैं जो कहें कि नहीं दीदी गुस्सा तो चाहिए ना, ऐसे कैसे गुस्सा छोड़ सकते हैं, ऐसी सोच यदि किसी की है जरा हाथ उठाएंगे प्लीज। अच्छा, ऐसी सोच तो किसी की नहीं है ना। तो ये परिसर, इतना स्पिरिचुअली चार्ज एटमॉस्फियर है, आपको अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप सत्र सुनते जाएंगे, आपको अपनी बुराइयों को छोड़ने में अपने आप सहजता महसूस होती जाएगी। मेरा एक विनम्र निवेदन है, जितने भी सेशंस आपके शेड्यूल में लिखा हुआ है, अनुरोध है कि आप सारे सेशंस को जरूर जरूर अटेंड करें। आप सभी के लिए साइट सीइंग के लिए विशेष समय तारीख तय की गई है। जिस दिन आप साइट सीइंग के लिए जाएंगे, पूरे माउंट आबू का दर्शन करने का आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आप कभी अपने मन में ये न लाएं कि इतना सारा सेशन अटेंड कर रहे हैं तो हमें घूमने को कब मिलेगा। आप इतने सारे सेशंस अटेंड करने के बीच भी आपको थोड़ा थोड़ा समय दोपहर का, और साथ ही साथ जिस दिन आपका साइट सीइंग रखा गया है उस दिन आपको घूमने का बहुत सुंदर अवसर मिलेगा। तो इसलिए निवेदन है कि आप सभी निश्चित रूप से हर सेशंस का लाभ लें, समय पर पहुंचे और अपने आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में स्वयं को मदद करें। तो हम प्रारंभ करेंगे आज का ये सुंदर सा रिसेप्शन सेशन। मेरा अनुरोध है, मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ परम आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, जो हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। आप कृपया मंच पर आएं और मंच की शोभा बढ़ाएं। साथ ही साथ आज हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हैं सम्माननीय भ्राता संजय चावला जी, डीजी AQA एरोनॉटिक क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आए हुए हैं। आदरणीय भ्राता संजय चावला जी, आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया आप मंच पर आसन ग्रहण करें। सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों से अनुरोध है, आप जोरदार तालियों से मंच पर जो मेहमान आ रहे हैं आप उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ आज की सम्माननीय अतिथि हैं मिसेस दीपिका उपाध्याय जी, सेक्रेटरी जनरल इंडो श्रीलंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो विशेष नोएडा से हमारे बीच पधारी हैं। आपसे भी अनुरोध है आप मंच की शोभा बढ़ाएं। हैदराबाद से पधारे राजयोगिनी आदरणीय अंजलि दीदी, पानीपत से पधारे राजयोगिनी आदरणीय ज्योति दीदी, आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि आप मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट विंग के चेयरपर्सन सम्माननीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी कुछ ही देर में हमारे मध्य पहुंच रहे हैं। हम परमात्मा की याद में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है, जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
भारतीय संस्कृति सर्व महान संस्कृति है और हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथियों को देवताओं का दर्जा दिया गया है। तो मंच पर आसीन अतिथियों का स्वागत के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ और आप सभी सभा में उपस्थित भाई बहनों से अनुरोध करूंगी, जब तक स्वागत चलता रहे तब तक आप सभी अपने तालियों का सहयोग देते रहे। हमारे मध्य साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग के चेयरपर्सन सम्माननीय आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी पहुंच चुके हैं। मेरा आपसे निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय भाई साहब का स्वागत करेंगे। रिस्पेक्टेड मोहन सिंगल भाई जी, रिस्पेक्टेड संजय चावला जी, रिस्पेक्टेड राजयोगिनी आशा दीदी जी, रिस्पेक्टेड दीपिका उपाध्याय जी, रेस्पेक्टेड अंजलि दीदी जी, स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य बहुत सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं मधुरवाणी ग्रुप के आदरणीय सतीश भाई जी और नितिन भाई जी। ये दोनों भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमें संस्थान सिखाता है अपने अंदर जो विशेषताएं हैं उसे हम निखारें, और जैसे ही हमारा मन शांत होता है, हमारे मन में स्थिरता आती जाती है, तो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। और उसी का एक सुंदर सा निदर्शन आपके सामने है। हमारे आदरणीय सतीश भाई जी बहुत सुंदर गीत लिखते भी हैं और गाते भी हैं। और हमारे नितिन भाई जी एक बार हाथ हिला के परिचय करें। हमारे नितिन भाई जी, उनके पास एक बहुत सुंदर कला है, वो बहुत सुंदर मिमिक्री करते हैं और साथ ही साथ आप दोनों मेल और फीमेल वॉइस में गाना गाने की क्षमता रखते हैं। मैं सोचती हूँ आपको उनके इस कला का लाभ लेने का अवसर इन चार दिनों में अवश्य ही मिलेगा। ओवर टू मधुरवाणी ग्रुप।
ओम शांति। एक बार सभी सास्वर कहेंगे ओम शांति। हरी भरी इन वादियों में प्यारा ज्ञान सरोवर है और ज्ञान सरोवर कितना प्यारा मंगल मधुर मनोहर है। आपका इन वादियों में इस सुंदर परिसर में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत स्वीकार करें। बहुत बहुत स्वागत। बाटे
शुद्ध विचारों से सुख बांटे, शुभ कर्मों में ही कल्याण। वैज्ञानिक अभियंता आए, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, करेंगे नव युग का निर्माण। वैज्ञानिक अभियंता आए, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान।
आप बिना ईश्वरीय योजना अधूरी थी, उसी पूरी करने आप आए हैं।
रे सनेरे गर सागर मगर मा पगर गसार सारे, सनेरे गर सागर मगर मा पगर गसार सा। आप बिना प्रभु योजना अब तक रही अधूरी है, वक्त है नाजुक आपका आना, इसमें बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता में हल मिलता, आध्यात्मिकता में हल मिलता, पवित्रता में है समाधान। वैज्ञानिक अभियंता आए, सादर स्वागत है सम्मान, सादर स्वागत है सम्मान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, करेंगे नव युग का निर्माण। वैज्ञानिक अभियंता आए, सादर स्वागत है सम्मान, करेंगे नव युग का निर्माण। सादर स्वागत है सम्मान, करेंगे नव युग का निर्माण। सादर स्वागत है सम्मान, करेंगे नव युग का निर्माण। सादर स्वागत है सम्मान, करेंगे नव युग का निर्माण।
मधुर वाणी ग्रुप का हमारे आदरणीय सतीश भाई जी, नितिन भाई जी, बिथिंद्र भाई जी का जोरदार तालियों से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ भिलाई से तीन नन्ही परियां आपके स्वागत के लिए आ रही हैं, कुमारी सिवन्या, कुमारी सुदीक्षा, कुमारी श्रद्धा। आप सबसे अनुरोध है उन तीनों कुमारियों के स्वागत में जैसे ही वो मंच पे एंट्री लेंगे आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिएगा, उनका उत्साह वर्धन करिएगा। कुमारी सिवन्या और कुमारी सुदीक्षा ये दोनों ट्विन्स हैं।
आयो रे उमंग नापुर मटिया रे, भक्ति ना सागर छलकाया रे, उमंग ना पूर उमटिया रे, भक्ति ना सागर छलकाया रे।
शुभ स्वागतम,
ओ शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम,
ओ शुभ स्वागतम,
स्वागत है आपका। स्वयं भगवान ने आपको अपने घर में बुलाया है। आपके जीवन को बहुत खुशियों शांति से भरने बुलाया है।
शांति के संसार में स्वागत है सादर आने, शांति के संसार में स्वागत है सादर आए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाई, शांति के संसार में, शांति में परिवार को अधिकार से अपनाए, शांति में परिवार
बहुत सुंदर। पुनः एक बार जोरदार तालियों से तीनों कुमारियों का तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। पीछे मुड़ जाओ। माउंट आबू के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुतों ने सोचा होगा, कईयों का लास्ट मोमेंट टिकट कैंसिल भी हो गया होगा, और आप में से कई ऐसे भी बैठे होंगे जिनका लास्ट मोमेंट प्रोग्राम बन गया होगा। पर अल्टीमेटली जो भी इस परिसर में पहुंच चुके हैं वो अपने आप के लिए अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझते हुए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग के चेयरपर्सन रेस्पेक्टेड राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी उपस्थित हैं। आदरणीय भाई साहब धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से आपने एमटेक की डिग्री प्राप्त की, तत्पश्चात आपने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में 28 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। 1998 में आपने जियोफिजिसिस्ट के पद से सुपरिंटेंडिंग जियोफिजिसिस्ट के पद से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और आपने अपने जीवन को पूरी तरह से मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में कई सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन माउंट आबू और अन्य भारत के प्रमुख शहरों में हो चुका है। आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में कई एनवायरमेंटल अवेयरनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट कैंपेन्स का आयोजन भारत तथा नेपाल में भी किए गए हैं। आदरणीय भाई साहब साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग का जो अतुलनीय योगदान है पर्यावरण सुरक्षा के प्रति, उसे देखते हुए आदरणीय भाई साहब को पर्यावरण श्री के सम्मान से नवाजा गया। आप सबको यह जानकर खुशी होगी, राजस्थान के राज्यपाल महोदय जी के द्वारा आपको ग्रीन आइडोल के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आदरणीय भाई साहब अपने कार्यकाल में जहां जहां आपकी पोस्टिंग होती रही, चाहे बिहार, चाहे गुजरात, चाहे अन्य प्रदेशों में, जहां जहां जब जब आपकी पोस्टिंग हुई, तो आपका ये प्रयास रहा कि वहां पर ब्रह्मा कुमारी का एक सेवा केंद्र अवश्य ही खुले। तो आदरणीय भाई साहब हमारे संस्था के संस्थापक, जिन्हें हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं, और हमारे जो फर्स्ट हेड रही मम्मा, उनके सानिध्य में आपने उनकी पालना प्राप्त की और वही बल आपको अनेकों सेवा केंद्र खोलने के लिए प्रेरित करती रही। तो मैं आज भाई साहब से अनुरोध करूंगी, आप शब्दों से सभी का स्वागत करने के साथ साथ आप जिस सुंदर से परिसर ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, जो 40 एकड़ में फैला है, जहां पर इस हॉल में आप बैठे हैं जिसकी 1600 सिटिंग कैपेसिटी है, यहां मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की फैसिलिटी भी है, आप इस परिसर के एकेडमी कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूंगी आप शब्दों से सभी का स्वागत करें। आदरणीय भाई साहब,
ओम शांति। बहुत शुभ संध्या, और भारत के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए आप सभी बहनों और भाइयों, विशेष करके हमारे मंच पर विराजित हमारे परम आदरणीय, हमारे सम्माननीय मेहमान भ्राता संजय चावला जी, जो डायरेक्टर जनरल हैं रिटायर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से, साथ ही मिसेज दीपिका उपाध्याय जी, सेक्रेटरी जनरल इंडो श्रीलंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मंच पर साथ ही हमारी इस विंग की परम आदरणीय वाइस चेयरपर्सन आदरणीय बहन जी आशा दीदी जी, जो भिलाई से विशेष पधारे हुए हैं, कार्यक्रम का जो संचालन कर रही हैं, अस्मिता बहन जी जो खुद भी एक इंजीनियर हैं और सीनियर राजयोग का टीचर बालोतरा से पधारी हैं, विशेष करके इतनी दूर से हैदराबाद से आई हुई हमारी आदरणीय राजयोगिनी अंजलि बहन जी, जो भी खुद एक इंजीनियर हैं और सीनियर राजयोग का टीचर हैदराबाद से पधारी हैं, ज्योति बहन जी जो पानीपत से यहाँ पधारी हैं विशेष करके एक योगाभ्यास कराने के लिए, और मंच पर हमारे भ्राता भारत भूषण जी थोड़ी देर में पधारने वाले हैं वो, और साथ में पूरे भारत भर में इस कार्यक्रम को देखने वाले, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में इस कार्यक्रम का जो रिले हो रहा है ये, तो उन सभी भाई बहनों का मैं यहाँ पर बहुत 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 हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग अपना समय निकाल करके आए, और विशेष करके इस प्रांगण में, क्योंकि यह केवल एक प्रांगण ही नहीं है, ज्ञान सरोवर, बल्कि ये एक ऐसा स्थल है जहाँ बाहरी प्रकृति और आंतरिक प्रकृति का एक मिलाप होता है। नेचर हम कहते हैं, और हम सब भारतीय संस्कृति में बचपन से ही पले हुए हैं, जानते हैं कि हमारे बाहरी नेचर में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्व हैं ही, और उस विशाल तत्व के अंदर अंदर ही यह पूरा विश्व समाया हुआ है। लेकिन हमारी जो आंतरिक प्रकृति है, ये शरीर जो भी इन पंच तत्वों का बना हुआ है, वो आंतरिक प्रकृति बाहरी प्रकृति पर तो हम नियंत्रण करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसा बहन जी ने बताया, पर्यावरण प्रदूषण के क्षेत्र में भी किस प्रकार से उस पर नियंत्रण पाया जाए, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय काफी समय से कार्य कर रहा है और इसको सराहा भी गया है। केवल भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ही नहीं, बल्कि विश्व के कोने कोने में कई जगह यहाँ के जो इंजीनियर्स, साइंटिस्ट आदि हैं, उन्हें बुलाया गया है और उन्होंने इस क्षेत्र में काफी प्रकाश भी बाहर डाला है। लेकिन बाहरी प्रकृति के साथ साथ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मान्यता है कि आंतरिक जो प्रकृति है उस पर भी हमारा इतना ही नियंत्रण हो, और दोनों प्रकृतियों के नियंत्रण से, उसके एक आपसी अंडरस्टैंडिंग से, हम अपनी इस संपूर्ण वातावरण को एक इतना स्वच्छ बना सकें, शांतमय बना सकें कि इसके अंदर जो भी व्यक्ति रहे, केवल व्यक्ति नहीं बल्कि कोई भी जीवित या अजीवित जो चीज है, वो सब अथा ऐसी शांति शक्ति का अनुभव करें। और इस उद्देश्य से ये जो ज्ञान सरोवर बनाया गया, जैसा बहन जी ने बताया, लगभग 40 एकड़ में बना हुआ है, और आप इसके अंदर जैसे ही आपने प्रवेश किया होगा, बड़ी ही शांत ऐसा आपको अनुभव हुआ होगा कि यह कुछ अलग ही वातावरण है। वो तो आप आगे आने वाले 3-4 दिनों में और अनुभव करेंगे ही। लेकिन इस ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, जिसका नाम दिया गया है, ये एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड इस बात में भी विशेष अपना स्थान रखती है कि इतने बड़े स्थल में, जहाँ पर भी हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट में काफी बड़े, लगभग 100 मीटर का भी अंतर है, उसके अंदर हमने जब इसे बनाया तो ये प्रयास किया गया कि कोई भी ना तो पेड़ काटना पड़े, कोई भी इसके अंदर जो जमीन है, जितने जो फ्लोरा एंड फौना है, उसको पूरा का पूरा मेंटेन करके रखा जा सके। इसी कारण से जब आप लोग कोई भी विश्व के कोने कोने से व्यक्ति यहाँ आते हैं तो एक आंतरिक शांति की अनुभूति करते हैं, क्योंकि बाहर की प्रकृति और हमारी आंतरिक प्रकृति दोनों का एक ऐसा मिलाप होता है जिसका आप अनुभव भी करेंगे हमारे प्रातःकालीन 4 दिन के शिविर के अंदर। और इस कारण से ये हॉल भी जो है, इसका नाम भी रखा गया है हार्मनी हॉल, क्योंकि प्रॉपर हार्मनी इज डेवलपिंग एक्चुअली हियर बाय वेरियस प्रोग्राम्स, होम सो एवर दोज हु आर अटेंडिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट वेन एवर दे कम दे फील कि हमारे अंदर की हार्मनी और बाहर की हार्मनी सारा मिल करके एक ऐसे विश्व का निर्माण हो रहा है, और सबसे पहले ये मेरे से ही शुरू हो रहा है। तो इसके अंदर हमारे लगभग 18 भाषाओं के ट्रांसलेशन की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग 140 देशों से जो डेलीगेट्स आते हैं, उनके जो प्रोग्राम होते हैं, वो प्रोग्राम उनमें तो अलग अलग भाषाएं हैं विश्व के कोने कोने में, तो सब भाषाओं के ट्रांसलेशन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। और अभी लगभग जो अगस्त सितंबर तक ये भारत के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, और इसके बाद सितंबर से लेकर के अगले मार्च तक विश्व के कोने कोने से जैसा मैंने बताया हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की लगभग 140 देशों में ब्रांचेज हैं, वहां से डेलीगेट्स आते हैं और उनके प्रोग्राम होते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है चलते रहते हैं यहाँ पर, और इसी कारण से इसका नाम एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड रखा गया है कि इसका उद्देश्य केवल भारत ही नहीं बल्कि एक ऐसे नए विश्व की रचना करना है जिसके अंदर संसार का प्रत्येक नागरिक सुख शांति से रह सके। इसके नीचे ही यहाँ पर मेडिटेशन हॉल है लगभग 300 की कैपेसिटी का, और वहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लगभग जो 150 से 200 भाई बहन हैं, उनके दिन शुरू होता है प्रातः 3:30-4 बजे से, पहले मेडिटेशन होता है और उसके बाद पूरा दिन के कार्यक्रम उनके चलते रहते हैं। तो ये मेडिटेशन सेंटर है अपो, और इसी कॉम्प्लेक्स में एक आर्ट गैलरी है, शायद आप में से कुछ ने अवलोकन भी किया होगा, न किया हो तो अवश्य करके जाएं, क्योंकि उस आर्ट गैलरी में केवल भारतीय संस्कृति का नहीं बल्कि विश्व की लगभग सभी मुख्य संस्कृतियों का बहुत अच्छे अच्छे चित्रों के, मॉडल के, ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से उन भारतीय संस्कृतियों को दर्शाया गया है। तो वो जरूर देखिएगा, और ये वेन्यू इसीलिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इसके अपोजिट जो है हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, और वो ट्रेनिंग सेंटर में भी हमारे कार्यक्रम होते हैं। लगभग उसमें 13 हॉल्स का निर्माण किया गया है जहाँ पर पैरेलल प्रोग्राम्स चलते हैं। आप लोगों के भी कल या परसों, शायद ज्यादातर करके कल ही, कुछ वर्कशॉप्स रखे गए हैं, आप लोगों को बैच में भी लिखा होगा और जो प्रोग्राम बुकलेट है उसमें उनका वर्णन है। फर्दर उसके और आगे जब चलते हैं तो वहाँ पर हमारा भोजन कक्ष है, उसके अंदर भी अलग अलग हॉल हैं, क्योंकि एट ए टाइम जब यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो 1000 से अधिक संख्या जब हो जाती है, नीचे से भी कॉम्प्लेक्स से लोग आते हैं, पांडव भवन जो हमारा मुख्यालय है, तो भोजन कक्ष में भी हमारे लगभग 5 डाइनिंग हॉल हैं अलग अलग, और आप तो उस डाइनिंग हॉल में शायद जब से आए हैं किसी में गए होंगे, और भी आगे देखते रहेंगे। और उस फर्दर जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पर हमारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो यहीं पर ही है हार्मनी हाउस, और दूसरा विष्णुपुरी, राजऋषि भवन आदि आदि, वो डाइनिंग कॉम्प्लेक्स, वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पर हैं जहाँ पर कि आप सबके भी रहने का प्रबंध किया गया है, और जो यहाँ के निवासी हैं वो भी रहते हैं। इनके साथ साथ आगे फर्दर और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। राजस्थान एक वाटर डेफिसिट स्टेट है, तो इसी कारण से यहाँ पर जो भी हमारा वेस्ट होता है, सीवेज, किचन वेस्ट, सीवेज वेस्ट आदि आदि, उन सबको रिसाइकिल करके और फिर रीयूज करके ग्रीनरी में यूज किया जाता है। इसलिए जहाँ एक तरफ राजस्थान में इतनी हरियाली नहीं दिखेगी सूखा जैसा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरी हरियाली उसके कारण है। लेकिन इस सीवेज ट्रीटमेंट के साथ जो विशेषता है वो है थॉट्स की रिसाइकलिंग, थॉट्स का ट्रीटमेंट, क्योंकि ये ट्रीटमेंट तो बहुत जगह होता है कि जो हमारे वेस्ट होते हैं सीवेज वेस्ट, उसको रीट्रीट करके फर्दर यूज करना, लेकिन थॉट्स जो आज की दुनिया में अधिकतर परिस्थितियों के कारण हम सबके नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना आदि आदि, तो ये नेगेटिविटी है। तो यहाँ पर वो मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है कि इन नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करके अपने डे टू डे वर्क में उसको यूटिलाइज कर सकें, जो कि बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज प्रॉब्लम वर्ल्ड ओवर में एक मेजर प्रॉब्लम हेल्थ की भी है, और उसका मुख्य कारण मेडिकल साइंस भी कहती है, डॉक्टर कहते हैं, हमारे निगेटिव थॉट्स अधिक हैं और उसी के कारण ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और इंसोमनिया, नींद का ना आना आदि आदि अधिकतर बीमारियां उसके कारण होती हैं। तो जब निगेटिव थॉट्स को हम कन्वर्ट करना सीख जाते हैं पॉजिटिव थॉट्स के अंदर और हमारे जीवन में निगेटिव थॉट्स न रहें, ये विशेषता इन चार दिनों के लेक्चर्स इसी प्रकार से आयोजन किए गए हैं कॉन्फ्रेंस के, और विशेष करके मॉर्निंग मेडिटेशन वो आपको हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं बहन जी वो और उसका विशेष बताएंगी कि किस प्रकार से चार दिन जो ये कार्यक्रम चलेगा उसमें आप लोगों को थोड़ा शुरू में जरा डिफिकल्टी हो सकती है जरा जल्दी उठने की, इतना अभ्यास हम लोगों को नहीं होता है, लेकिन उठेंगे कुछ आधा एक घंटा पहले, लेकिन जो प्राप्ति होगी कई घंटों के बराबर वो प्राप्ति, वो उन सब का पूरा डिटेल विश्लेषण करके आपको केवल बताया नहीं जाएगा। सुबह से जब से कार्यक्रम शुरू होंगे तो उसमें योग, हठ योग का उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा, प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी और उसके बाद मेडिटेशन का भी। और इसी कारण से भारत के ये जो प्रसिद्ध हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से जो 21 जून दिवस करा गया, 21 जून ही है ना, तो जो योगा डे, इंटरनेशनल योग डे उसको मनाया जाता है, और अधिकतर लोग समझते थे योगा माने मेडिटेशन भी, लेकिन इसका और अधिक कंफ्यूजन कुछ ना हो इसीलिए 21 दिसंबर को भी ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड योगा डे वो अलग है जून में, और वर्ल्ड मेडिटेशन डे वो उनका भी पूरा विश्लेषण आपको बताया जाएगा। मैं आपका और अधिक समय न लेकर के एक बार पुनः इस स्पेशल कॉम्प्लेक्स में, ये कॉम्प्लेक्स स्पेशल इसीलिए नहीं है कि फिजिकली देखने में बहुत हिल स्टेशन इससे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का जो इंटरनल वातावरण है जिसे यहाँ के राजयोग के अभ्यासियों ने पिछले लगभग 35 वर्षों से भी अधिक से वो इसको स्पिरिचुअली चार्ज किया हुआ है, आप उसका अनुभव विशेष करके जाए। क्यों? क्योंकि फिजिकली तो हिल स्टेशन पे बहुत जगह गए होंगे, जाते भी रहते हैं, लेकिन ये वातावरण इतना पवित्र, और इस उपलक्ष्य में बहन जी आपको जब और विशेष बताएंगे तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो एक पूरी तरह रिन्यू होके एक नए मानव बन करके जाएंगे, और ऐसी अनुभूति आपको जीवन भर के लिए एक ऐसी मार्ग प्रदर्शना देती रहेगी। जो जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन पेपर्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपकी स्वस्थिति, अपनी आंतरिक अवस्था उन परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करके आपको सदा पॉजिटिविटी का अनुभव कराती रहेगी। इन्हीं शुभ उद्देश्यों के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है।
आदरणीय भाई साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भाई साहब के लिए चंद शब्द कहना चाहूंगी। जो थक कर भी न रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। हमारे आदरणीय भाई साहब, आप सभी यहाँ पर पहुंचे, आप सबके लिए हर प्रकार की व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके उसके लिए पिछले 4 महीनों से अथक प्रयास कर रहे हैं, और आज के इस कॉन्फ्रेंस की सफलता का श्रेय हमारे आदरणीय भाई साहब को जाता है। एक बार भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। आप सभी को ज्ञात है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 90 वर्षों से कार्य करती आई है, और भाई साहब ने आपको बताया 140 देशों में इसकी शाखाएं व्याप्त है, और माउंट आबू हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है। प्रति वर्ष संस्था के द्वारा एक बहुत सुंदर थीम लिया जाता है, जिस थीम को लेकर हम सभी आत्मा की उन्नति का प्रयास भी करते हैं, साथ ही जो लोग आध्यात्मिकता से अनभिज्ञ हैं, उन्हें आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक करने का प्रयास भी किया जाता है। आज हर व्यक्ति कहता है दुनिया बदल गई है। आप भी ऐसा ही कहते हैं? आप भी ऐसा ही कहते हैं दुनिया बदल गई है? ज्यादातर सिर हिल रहे हैं कि हाँ दुनिया बदल गई है। पर एक सोचने की बात है, नीम ने अपना कड़वाहट नहीं छोड़ा, नीम ने अपना कड़वाहट नहीं छोड़ा, आम ने अपना मिठास नहीं छोड़ा, लेकिन क्या छूट गया? क्या छूट गया? इंसान की इंसानियत छूटती चली गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनुष्य के अंदर की इंसानियत जो धीरे धीरे खोती जा रही है, उसे उजागर करने की शिक्षाएं दी जाती है। केवल इंसानियत ही नहीं, इससे बढ़कर मानव के अंदर जो देवत्व छिपा हुआ है, जो डिविनिटी छिपी हुई है, उसको उजागर करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। और इसी लक्ष्य को लेकर वर्ष 2025 और 26 के लिए एक बहुत सुंदर थीम का चयन किया गया है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल, विश्व उत्कर्ष के लिए, विश्व नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति। तो इस थीम के बारे में स्पष्ट करने के लिए हमारे मध्य आ रहे हैं, हैदराबाद से आए हैं राजयोगिनी आदरणीय अंजलि दीदी जी। आप केमिकल इंजीनियर हैं, आपने हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 1985 से आप संस्थान से जुड़े हुए हैं। 1993 से पिछले 33 वर्षों से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के साथ साथ आप एजुकेशन विंग के भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैकल्टी हैं। और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 3000 गवर्नमेंट टीचर्स को आपने ट्रेन किया है एज अ फैसिलिटेटर ऑफ एजुकेशन इन वैल्यूज मेडिटेशन एंड योगा। मैं एक छोटा सा अनुरोध करूंगी आदरणीय दीदी को हम सभी सुन सके, उससे पहले हमारे मध्य मंच पर उपस्थित हुए हैं साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर सम्माननीय आदरणीय राजयोगी भारत भूषण भाई जी, जो विशेष पानीपत से इस कॉन्फ्रेंस में पधारे हैं। बहनों से अनुरोध है आप पुष्पगुच्छ पट्टे के द्वारा आपका स्वागत करें। आप सभी जोरदार तालियों से आदरणीय भाई साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय अंजलि बहन जी,
ओम शांति। आज इस सभा में हमारे बीच आदरणीय भ्राता जी चीफ गेस्ट आज की इस सेशन के मिस्टर संजय चावला जी, साथ में उपस्थित राजयोगी मोहन सिंगल भाई जी जो चेयरपर्सन है इस विंग के, आदरणीय वाइस चेयरपर्सन दीदी आशा जी जो भिलाई से पधारे हैं, और साथ में भरत भूषण भाई जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारे बीच दीपिका उपाध्याय जी भी पधारी हैं, मेरी साथी बहनें ज्योति बहन और अस्मिता बहन, और आप सब। आज यह रिसेप्शन सेशन जिसमें विशेष अवेकनिंग द लीडर विद इन का यह विषय लिया गया है, एंड मुझे विशेष ब्रह्मा कुमारी इसमें जो यह वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल या स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल। तो पहले तो वर्ल्ड रिन्यू करने की जरूरत है। ओल्ड हुआ है क्या वर्ल्ड? बूढ़ा हो गया है? दुनिया बूढ़ी हो गई है या और ही और यूथ बनते जा रही है? क्या कहना है आपका? वर्ल्ड इज बिकम ओल्ड और वर्ल्ड इज वेरी यंग नाउ? व्हाट डू यू से? यदि काल चक्र को हम देखें, द साइकिल ऑफ टाइम, उसमें अभी कौन सा समय चल रहा है? कौन सा समय? सतयुग? ना 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 बोलेंगे, कहेंगे कलयुग चल रहा है. तो द टाइम्स इन विच वी आर, ओल्ड कहेंगे न्यू कहेंगे, पहले लेट अस क्लैरिफाई. इट्स एन ओल्ड वर्ड, बट देन वी आर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, एंड यू नो वी डिजाइन सो मेनी न्यू थिंग्स. सो इट्स बिकमिंग न्यू और ओल्ड. हाउ वुड यू डिफाइन ओल्ड और न्यू? ओनली बाय एज? ओनली बाय एज? बिकॉज ओल्ड पीपल से ओल्ड इज ओनली अ नंबर, है ना? जैसे लोग ओल्ड होते जाते हैं, दे से टू देमसेल्व्स कि अरे भाई बुढ़ापा, या यू नो दिस इज ओनली अ नंबर. सो बुढ़ापा क्या होता है ना? When our systems start slowly failing us, you want to walk fast, you are not able to. You want to sit, आपके कमर में दर्द है. आपको सीढ़ी चढ़ना है, आपके घुटनों में दर्द है. Then we slowly start saying to ourselves, कि नहीं, मैं भी बुढ़ापा आ रहा है. So my question now is कि दुनिया को जब हम देखते हैं, ऑल द सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव द रिलीजियस, द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, वी हैव गवर्नेंस, वी आर बींग रूल्ड, डिफरेंट वेज ऑफ गवर्नेंस है, एंड वी हैव अस इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, राइट? सो व्हेन यू लुक एट ऑल दिस सिस्टम्स, द सिस्टम ऑफ रिलीजन कैसी है? इट्स बिकमिंग बेटर एंड बेटर, यस नो? नो, ऑल ऑफ यू आर ऐसे ऐसे कर रहे हैं. एंड जैसे गीता में कहा गया है, धर्म ग्लानी, वेन इन द वर्ल्ड देर इज इरिलीजियसनेस, एंड यू थिंक दीज आर द टाइम्स, टाइम्स ऑफ इरिलीजियसनेस. रिलीजन नेम से एक रह गया है, लेकिन उसके जो गुण हैं, रिलीजन मतलब जो शांति मिलनी चाहिए सारे समाज को, हर व्यक्ति को, वो वाली शांति तो है नहीं, और ही अशांति का अनुभव हो रहा है. सो समवेयर यू नो वी आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द रिलीजन. एंड फिर दूसरी सत्ता है गवर्नेंस. तो सारी दुनिया में, सारे ही देशों में डिस्टर्बेंसेस है. इफ यू लुक अराउंड ग्लोब, पूरी दुनिया में सिस्टम्स आर फेलिंग. एंड तीसरी चीज हम लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो बहुत नई नई चीजें ला रहा है, लेकिन ओवरऑल देखो, ओवरऑल देखो तो क्या हो रहा है? विकास की ओर जा रहे हैं या विनाश की ओर जा रहे हैं? विनाश की, राइट? शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, स्पेशली हमारा मोबाइल. आई हर्ड टू डेज बैक सुधीर चौधरी, है ना, उसमें वो कह रहे थे डीकोड में कि नहीं, नो पीपल आर गोइंग बैक फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू द वो छोटा वाला फोन. सो एंड वी कॉल्ड इट स्मार्टफोन. मे बी यू नो क्या हो गया हमको, स्मार्टनेस हमारी खत्म हो गई, एंड समझ में आया कि ये तो हमको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, राइट? सो इफ यू लुक एट ऑल द सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. अच्छा, इकोनॉमी ले लीजिए. इकोनॉमी अच्छी है, बूमिंग इकोनॉमी. लेट्स टॉक ऑफ द होल वर्ल्ड. मैं तो कभी कभी कहती हूं, लक्ष्मी जी को अभी पसंद नहीं है किसी के हाथ में रहना, क्योंकि अच्छे नहीं है, लोगों के शुद्धता नहीं है हाथों में, इसलिए कार्ड कार्ड, हर चीज कार्ड से करते हैं. लक्ष्मी जी आना ही नहीं चाहती है किसी के हाथ में. कार्ड, नेट बैंकिंग करो जी, क्योंकि लक्ष्मी जी को जब दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं ना, पैसे का ऐसे ऐसे आ रहा है. तो इतना लक्ष्मी जी भी जो कह रही है कि नहीं, ये वाली जो दुनिया है ना, शायद इट इज नॉट सो प्योर, क्योंकि लक्ष्मी अर्थात जहां श्रेष्ठ लक्षण है वहां लक्ष्मी का निवास है, राइट? तो ऐसे श्रेष्ठ महान लक्षण, दैवत्व के लक्षण आज कहां है? दिव्यत्व नहीं है, डिविनिटी नहीं है. क्या है? थोड़ा सा शब्द चेंज करें हम, दिव्यत्व नहीं है, दैत्य, दैत्य होता है ना, डेमनिश, ऐसी वाली दुनिया बन गई है. जहां एक समय पर दुनिया थी, जैसे बहन ने कहा दिव्यत्व की, दिव्यत्व का बहुत सिंपल डेफिनेशन है ब्रह्मा कुमारी इसके पास, देवता कौन, यहां हमको सिखाया जाता है देवता मींस देने वाला। देवताओं के हाथ कैसे दिखाए जाते हैं, ऑलवेज गिविंग। आजकल हमारे हाथ कैसे है बताओ, कैसे है बताओ, कहां है, ऐसे नहीं, ऐसे सारे स्कैम्स। जितने सारे वेलफेयर वो रहते हैं उसमें कितने बड़े बड़े स्कैम्स निकल कर आ जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें स्मॉल थिंग्स को लेकर के वर्ल्ड रिन्यूअल की बातें चल रही है। जैसे आप इस कैंपस में आए हैं तो आपको कैसे लगा, आपको रजिस्ट्रेशन फी के लिए कहां गया था, क्या कहां गया, नहीं, लेकिन सो एवरीथिंग इज फ्री। बट यहां आते ही ईच वन स्टार्ट्स फीलिंग वेरी रेस्पॉन्सिबल एंड अ सेंस ऑफ ओनरशिप कि फिर चलेगा कैसे, एंड सो कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट। देखो कितना चेंज ऑफ थॉट आ जाता है, कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट रादर देन कि जो है ना यहां से क्या लू। हाँ, सुख लेंगे, शांति लेंगे, प्रेम लेंगे, सब कुछ लेंगे, बट समवेयर द थॉट दैट आई वॉन्ट टू सपोर्ट सच एन एक्टिविटी, वो वाली चीज आ जाती है। देखो तो कितना बड़ा चेंज है ना इन थिंकिंग, जबकि हमारी जो दुनिया है उसमें थिंकिंग है व्हाट कैन आई, वो शब्द भी ऐसे लेना भी नहीं, जबरदस्ती लेना, गला पकड़ के लेना, यू नो थ्रेटन करके लेना ना, ऐसे दुनिया में लक्षण है लोगों के। और यहां आने के बाद एक टोटल चेंज में क्या दे सकता हूं, सो कहां से आते हैं ऐसे लक्षण, तो क्योंकि वी हैव अंडरगॉन लॉट ऑफ रेवोल्यूशंस। इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया, बहुत सारी क्रांतियां हो गई भारत में भी, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, सो मेनी रेवोल्यूशंस हैव टेकन प्लेस, बट स्टिल डिट्यूरेशन ही हुआ है वैल्यूज का, डू यू ऑल एग्री। एंड सो वेन वी टॉक ऑफ वर्ल्ड रिन्यूअल, इट्स नॉट ओनली एट द फिजिकल सेंस, बहुत कर लिया फिजिकल लेवल में, कोशिश की, सबने कोशिश की, सो नाउ वर्ल्ड रिन्यूअल हैज टू बी फ्रॉम इनसाइड, थॉट प्रोसेस में चेंज, बिलीफ सिस्टम में चेंज, एंड दैट हैपन्स, हाउ विल दैट हैपन, कैसे आएगा ये, वो आएगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। तो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता, पैसे की सत्ता, ऑल दीज थिंग्स ट्राई टू रियली मेक द वर्ल्ड बेटर, बट और डिट्यूरेशन ही हो गया। कहते हैं ना जैसे जैसे दवाई की और तबीयत खराब होते गई, तो वो हाल दुनिया का हुआ। एंड देन आप जिस परिसर में बैठे हो हियर, बहुत इनकॉग्निटो इफ यू आस्क मी, बहुत गुप्त रूप से एक क्रांति चल रही है जिसको हम नाम दे सकते हैं शांति की क्रांति। शांति में आवाज नहीं होता है ना, यू डोंट डू स्लोगन शाउटिंग शांति शांति, ऐसे नहीं होता है ना। सो ईच वन ऑफ अस इज लर्निंग हियर टू बी एट पीस विथ माई सेल्फ, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल, तो आपको जो क्लासेस कराई जाएगी उसमें आपको यह बताया जाएगा। फर्स्ट चीज यहां समझाई जाती है कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ। टूडे द अंडरस्टैंडिंग विच वी हैव अबाउट अवर सेल्फ इज वेरी वेरी सुपरफिशियल एंड मेटीरियलिस्टिक, विच कैन बी टेकन अवे फ्रॉम अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इज इट नॉट। आजकल करोड़पति रोडपति बनने में कितना टाइम लगेगा, करोड़पति से रोडपति मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, आपका वो क्रैश हो जाता है, सेंसेक्स क्रैश हो जाता है, या ना वो सारे क्रैश हो जाते हैं तो हो गया ना, देवाला निकल जाता है बोलते हैं ना लोग। सो मैं कौन, फ्रॉम अ वेरी इंटरनल एस्पेक्ट मेरी पहचान। सो द फर्स्ट चेंज इज फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस, मटेरियल कॉन्शियसनेस, टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एज अ सोल। हम भारत में बैठे हैं, कितने भी हम साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन आत्मा जैसी चीज को तो हम सब मानते ही हैं, गीता के भी हम पाठी होते हैं। तो पहला चेंज बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस। सेकेंड चेंज विच यू विल बी टॉक्ड ऑफ इज टू होम डू यू बिलोंग टू, आप हो किसके। क्योंकि हमारे जो भी रिश्तेदार हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आजकल तो बड़े लोग रह जा रहे हैं, छोटे चले जा रहे हैं, देख रहे हैं ना कितना दुख, कितनी अशांति, यू नो सच अ सिचुएशन वी आर। तो हु इज माइन भाई, हु कैन आई रियली टेक सपोर्ट फ्रॉम। और हमारा इटर्नल कनेक्शन है भगवान से, ही इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज एनी टाइम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो परमात्मा से कैसे कनेक्ट होना, विच इज कॉल्ड एस राजयोगा मेडिटेशन, ये एक नई चीज है। एंड कर्म करते हुए ये चीज कैसी करनी है, कर्म योग, वो यहां पर जो है सिखाया जाता है। पीपल जनरल फिर योग मना आंखें बंद कर लिए, ऐसे बैठ गए, फिर कामकाज क्या करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे तो नहीं होगा ना। तो कार्य करते हुए ईश्वर के साथ अपने को कैसे जोड़ना है। एंड तीसरी चीज यहां बताई जाती है कि अंडरस्टैंड द टाइम्स थ्रू विच वी आर पासिंग एंड हाउ गॉड इज वर्किंग, बिकॉज भगवान क्रिएटर है ना, डोंट वी से गॉड इज क्रिएटर, सो वो क्या कर रहे हैं, व्हाट इज ही क्रिएटिंग। सो ही इज क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो शुरू होती है न्यू थॉट से, न्यू बिलीफ सिस्टम से। और उस कार्य में आप सब भी सहयोगी बन सकते हो, आपको करना कुछ भी नहीं है, योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ओनली आई विल ब्रिंग चेंज विद इन माई सेल्फ, पॉजिटिव चेंज। सो ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन है, स्व परिवर्तन से वी विल ब्रिंग अ न्यू वर्ल्ड। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, रेज योर हैंड्स, इट्स वेरी नाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड वन क्लैप फॉर ऑल योर सेल्फ। Because if you participate, you will become a part of history of bringing the Satyuga or bringing the Golden Age along with the Almighty Godfather Shiva. So, these three changes जो है, ये changes यहाँ पर समझाई जाती है, लाई जाती है, उसके लिए trainings है, classes है, and so spiritually empower होने से एक बहुत सुंदर विश्व ना जो है वह स्थापन ना होने का कार्य चल रहा है। एंड आप सब इसमें पहुंचे हो, सो स्टे विथ अस नॉट ओनली फॉर दिस थ्री डेज, इवन आफ्टर यू गो बैक यू कैन गेट कनेक्टेड टू द सेंटर्स एंड स्टे विथ अस टिल वी ऑल ब्रिंग द गोल्डन एज। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
आदरणीय अंजलि दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। तो मैं आशा करती हूं कि विश्व परिवर्तन में, विश्व नवनिर्माण में आप सभी आज से ही एक बहुत शुभ संकल्प लेंगे कि आप अपने व्यक्तित्व में क्या पॉजिटिव चेंज लाएंगे जो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो अभी आज के इस ब्रह्मा कुमारी का 25-26 का जो थीम है उसके लॉन्चिंग के तहत हम दीप प्रज्वलन करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा मंच पर आसीन सभी महानुभवों से, आप सभी अपने हस्तों से दीप प्रज्वलन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करेंगे और अपना मोबाइल ऐसे ऊपर कर लेंगे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अपने लिए एक सुंदर सा विचार तय करेंगे कि मुझे अपने अंदर ऐसा क्या चेंज लाना है। अनुरोध है आदरणीय भाई साहब, आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय मेहमान, आदरणीय भ्राता संजय चावला जी, आदरणीय बहन दीपिका उपाध्याय जी, आदरणीय भारत भूषण भाई जी, अंजलि बहन, ज्योति बहन, सभी अपने टॉर्च को ऑन ऊपर करेंगे। हाँ जी,
विज्ञान हो या निर्मन का रास्ता, हर सपना सच हो सकता जब मन में हो शांति और सोच में हो दिव्या दृश्यता। इंजीनियर के नए इरादे, साइंटिस्ट के ऊंचे विचार, आर्किटेक्ट के सुंदर सपने बनाए नया संसार। इनर मास्टरी की शक्ति से परफॉर्मेंस को वो बढ़ाए, आत्मा विश्वास और योग बल से नई ऊंचाइयां पाए पाए। मन हो स्थिर और दृष्टि पवित्र, हर चुनौती आसन बने, ज्ञान और फिटल पावर से हर जीवन महाबन बने।
विश्व परिवर्तन के लिए आज सभी एक छोटा सा संकल्प ले सकते हैं। रात्रि को सोने से पहले 15 मिनट गुड नाइट मेडिटेशन करें। सभी राजी हैं? कर सकते हैं। 15 मिनट्स फॉर द सेल्फ, 15 मिनट्स टू कनेक्ट टू गॉड, 15 मिनट्स टू टॉक टू हिम, 15 मिनट्स टू बेग एक्सक्यूज फॉर द मिस्टेक्स वी हैव कमिटेड थ्रू आउट द डे। पॉसिबल तो मेरा अनुरोध रहेगा आज के सत्र के बाद आप सभी को यहीं पर सौगात दी जाएगी, इसलिए कोई भी सत्र के कंप्लीशन से पहले हॉल से कृपया बाहर न जाएं। और सत्र के बाद आप सभी भोजन करके, बाबा का कमरा है, मेडिटेशन रूम है, किस किसने देखा है, तो आप सभी मेडिटेशन रूम में जरूर जाएंगे। 10 मिनट मेडिटेशन रूम में बैठेंगे, परमात्मा से वार्तालाप करेंगे, दिन भर आपने क्या अच्छा बुरा किया उसे उस पर एक रिव्यू करेंगे, और कल के लिए एक बहुत सुंदर पॉजिटिव थॉट लेकर भगवान को गुड नाइट करके आप सभी शुभरात्रि करते हुए विश्राम करेंगे। और दिन की शुरुआत कितने बजे करेंगे सभी? सुबह 4 बजे करेंगे। आप सभी को 4 बजे इस हॉल में पहुंच जाना है। थैंक यू सो मच। अब मैं अनुरोध करूंगी आज के सम्मानीय अतिथि आदरणीय भ्राता संजय चावला जी, जो एक्स डीजी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, आप विशेष दिल्ली से हमारे बीच पहुंचे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, यू हैव योर मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इंडियन इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने में आपका बहुत बहुत अमूल्य योगदान रहा है। ड्यूरिंग योर टेन्योर यू हैव स्टीयर्ड DGAQA ऑर्गेनाइजेशन विथ इज विजनरी लीडरशिप एंड फोरसाइट टू टेक इंडियन मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री एट अ न्यूअर हाइट। ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू मेक इंडियन मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट। तो आदरणीय भाई साहब आज हमारे बीच पहुंचे हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध है आप अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। आदरणीय संजय चावला जी।
धन्यवाद। आदरणीय मोहन सिंगल जी, चेयरपर्सन, आशा दीदी जी, अदर डिग्निटरीज ऑन द डायस, ऑफ द डायस, लोधी रोड दिल्ली से भाई पीयूष जी, गिरिजा दीदी जी जिनके साथ मैं जुड़ा रहा, और ऑल रेवर्ड बीके सिस्टर्स, ब्रदर्स, ओम शांति। इट्स बोथ एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी मैं आज आप सबके बीच में इस ज्ञान सरोवर में पहली बार जो है मुझे इसका मौका मिला और मैं अपनी पत्नी सहित यहाँ का आनंद आज सुबह से जब से मैं पहुंचा हूँ उसको ले रहा हूँ और आप सब भी इसका आनंद ले रहे हैं। और ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है मुझे लगता है हमारे लिए। मैं एज ए इंजीनियर मिलिट्री एविएशन में काम किया। मिलिट्री एविएशन में हम लोग जहाज, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, ये सब जो है उसका डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्पेक्शन, जो कि एयरफोर्स, आर्मी या नेवी या कोस्ट गार्ड में जाता है उससे पहले जो है उसका निरीक्षण करके, और ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम रहता है, बहुत स्ट्रेसफुल काम रहता है। और ये काम किया इंजीनियरिंग करने के बाद, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से 40 साल मैंने काम किया पूरे देश में, जगह जगह, दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, उड़ीसा, तो जगह जगह जो है, बाकी जगह बेंगलोर, नासिक, जहां भी हमारे वर्क सेंटर हैं उसमें मैंने काम किया। और थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। भाई मोहन जी ने काफी बताया कि जो आउटर परफॉर्मेंस है हमारी, वो हमारी इनर कॉन्शियसनेस पे बहुत डिपेंड करती है। तो परफॉर्मेंस हमारी तभी बेस्ट होती है जब हमारी इनर कॉन्शियसनेस जो है वो परफेक्ट हो। और आज का थीम भी जो दिया गया, कि अवेकनिंग द इनर लीडर। नाउ लीडर तो हम सब में है, और इस अवेकनिंग टू अवर इनर लीडर जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो इंडिविजुअल्स इनर स्टेबिलिटी में रहते हैं वो अपना परफॉर्म जो है दे विद ग्रेटर कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी से कर पाते हैं। ए काम माइंड डिटेक्ट्स एरर फास्टर, ए डिसिप्लिन माइंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स बेटर, और एक पॉजिटिव माइंड इंस्पायर करता है टीम्स को नेचुरली, और इस तरह आप नेचुरली लीडरशिप में अचीव कर पाते हैं। नाउ क्या किया जाए कि हम अपना इनर लीडर को अवेकन करें? मैं आपसे शेयर करूंगा चार मंत्र जो मैं समझता हूं, जो मैंने उसको धारण किया, उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया, जिससे कि आप अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव कर सके। पहला मंत्र, रिस्पॉन्ड रेदर देन रिएक्ट। ये बहुत ही फेमस कोट भी है, आप लोगों ने सबने सुना होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इमीडिएटली कुछ ना कुछ रिएक्ट कर देते हैं। कोई सिचुएशन हो, कोई इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, हम रिएक्ट कर देते हैं। जनरली इमोशनल होता है वो ऑटोमेटिक इंपल्स है, इंपल्सिव रिएक्शन भी होती है। जबकि रिस्पॉन्ड करना, इट्स ए स्लोअर, आराम से सोचकर, समझकर, बेस्ड ऑन कॉन्शियस इवेल्युएशन और उसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए वो सिचुएशन आपको करना चाहिए। नाउ हमारे भी जीवन में, मेरा एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं दिल्ली में पला बढ़ा, दिल्ली में ही इंजीनियरिंग किया, सब पढ़ाई हुआ, दिल्ली में पोस्टिंग लिया, पहले यूपीएससी से क्लियर करने के बाद, उसके बाद पोस्टिंग आया कानपुर में, वहां रहे 3 साल एज ए फोर्स बैचलर, फैमिली दिल्ली में, बच्चे दिल्ली में, वहां पढ़ रहे हैं। सो एक नेचुरल होता है कि जब आप ऑल इंडिया सर्विस में हैं तो लाइबिलिटी तो है सर्विस की, लेकिन चाहता है आदमी के वापस अपने घर की तरफ जाए। सो मेरे साथ एक सिचुएशन आई कानपुर में, मुझे अभी 2 ही 3 साल हुए थे, और नॉर्मली टेन्योर हमारा 5 से 7 साल होता है, और बच्चे सब अच्छे एयरफोर्स स्कूल में, बड़ी मुश्किल से उनको एडमिशन कराना, बड़ी सिटीज में आपको मालूम है, मैडम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनका भी अच्छा प्रैक्टिस चल रहा था। तो मुझे एकदम एक पोस्टिंग ऑर्डर मिला कि हैदराबाद जाना है आपको। अब जो आदमी नॉर्थ में है उसको अगर साउथ जाना पड़े तो मैडम बहन हैदराबाद से हैं, मैं इस बारे में कहूंगा। सो इट वॉज एक तरह से शॉक जो होता है वो एकदम आया, क्योंकि आपका पूरा जो है पूरी फैमिली का आपका डिस्टर्बेंस जो हो जाता है, बच्चों की एजुकेशन, फैमिली। और कानपुर में तो मैं चलो ठीक है, 2-3 साल एज ए फोर्स बैचलर, महीने 2 महीने में चक्कर लगता रहता था, काम चला लेते हैं, लेकिन अब हैदराबाद जा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो वो एक सिचुएशन आई, मुझे कुलीग्स ने, बाकियों ने बहुत कहा कि इमीडिएटली रिएक्ट करो, ये तो गलत है आपके साथ, 3 साल में कैसे उन्होंने कर दिया। सो किसी एमपी को, एमएलए को अप्रोच करिए, दैट इज ए नॉर्मल रिएक्शन, कोर्ट में जाइए, ये सब चीजें जो है नॉर्मल रिएक्शन। और ऐसे कई मेरी सर्विस में बहुत ऑफिसर्स की ऐसे पोस्टिंग हुई और वो लोग कहीं ना एमपी से कहीं से चिट्ठी जो है वो रोज आती रहती है. दे अप्रोच हायर अथॉरिटीज, मिनिस्ट्री में जाते हैं, मंत्रालय में जाते हैं और ये सब चीज बड़ी कॉमन है. बट इस चीज को मैंने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया, समझा क्या उसके प्लस एंड माइनस हैं. ऑल ओवर इंडिया सर्विस में आप क्लास वन पोस्ट में हैं, आपकी लाइबिलिटी है और उसका भी एक तजुर्बा आपको मिलता है एक जगह जाने का. तो सोच विचार के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको भगवान का प्रसाद समझ के जहां भी मेरा दाना पानी है मैं उसमें जाऊंगा. और ये डिसीजन मैंने जो है सबसे पहले माता पिता को समझाना बड़ा मुश्किल है. उस जमाने में आज से 20-25 साल पहले हैदराबाद में बहुत रॉयट्स वगैरह होते थे, हिंदू मुस्लिम रॉयट्स, और वो तो वो बहुत ही कंसर्न था पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए होता है कि भाई सेफ्टी कैसे रहेगी वहां पर वो जो है. बट उसके बावजूद सबको प्यार से समझाया और हमने जो है ट्रेन पकड़ी कानपुर से और हैदराबाद. और मैं आपको बताऊं कि एक दो महीने लगे मुझे वहां सेट होने में, बच्चों का दोबारा एडमिशन, मैडम को अलग से दोबारा उनका होम्योपैथी का जो है क्लिनिक शुरू करना, वो सब चीज जो है आराम से परमात्मा की दया से होती चली गई. और ये सिचुएशन हुई कि 4 साल बाद मेरा अगला प्रमोशन आया तो मैंने मंत्रालय में ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे अब दिल्ली मत भेजिए, मुझे यहीं पर पोस्ट ट्रांसफर कर दीजिए दिल्ली से हैदराबाद. और मैं 10 साल हैदराबाद रहा और मतलब जो है अगर मैं रिएक्ट करता या किसी कोर्ट में जाता वो करता उससे शांति मेरी भी भंग होती और उसका भी होता. और जो अपॉर्चुनिटीज मुझे वहां मिली जो है वो इतना अच्छा रहा कि 10 साल बाद भी जब मेरी वहां से तबादला हुआ तो हमारी जो है धर्मपत्नी बोलती कि आप मैनेज कर सकते हैं दिल्ली में, तो आई एम वेरी हैप्पी हियर. सो ये सिचुएशन. सो मुझे लगता है कि कई चीजों में हमें जो है, और मुझे लगता है ऐसी लॉट ऑफ आपकी भी ऐसी सिचुएशंस डेली लाइफ में ये चीजें आती रहती हैं, तो सबसे बड़ा मंत्र मुझे लगता है कि वी शुड नेवर रिएक्ट, वी शुड रिस्पॉन्ड आफ्टर कॉन्शियस थिंकिंग. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मंत्र जो मैंने फॉलो किया. दूसरा मंत्र जो मैंने समझा कि यू रिमेन काम एमिड्स चैलेंजेस. जो भी सिचुएशन हो आपको अपनी शांति बनाए रखनी है एकदम जो है उसको, ऐसा नहीं कि आप एक्सप्लोड हो जाएं. सो कामनेस बहुत जरूरी है. जब काम रहेंगे तभी आप ठीक तरह से उसको सोचेंगे. एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं. हम जब मिलिट्री में जहाज बनता है तो हमारा एज ए इंजीनियर काम यह होता है कि जब जहाज जो है नट बोल्ट से लेके सब असेंबली, फाइनल असेंबली, उसमें इक्विपमेंट लग रहे हैं, उसके बाद हम उसको फ्लाइट के लिए क्लियरेंस देते हैं. हमारे साइन के बाद ही वो जहाज जो है पायलट उसको उड़ाता है. तो हम उसका पूरा निरीक्षण करके और उसके बाद ही उसको हवा में पायलट ले जाता है और फिर वो पायलट अपने आके चलाने के बाद में जो भी उसमें त्रुटियां हैं उसके बारे में बताता है, वो त्रुटियों को हम दूर करते हैं और फिर दोबारा अगली फ्लाइट में, और इस तरह हम उस जहाज को फाइनली क्लियरेंस देते हैं और वो फिर सर्विसेज में और इवन एक्सपोर्ट के लिए भी जाता है. तो एक दिन ऐसा ही सुबह इंसिडेंट आया कि एक पायलट हमारे कोस्ट गार्ड से आए, उन्होंने जहाज को वहां, हमने जहाज उसको चेक करा के सब उड़ा लिया था और इंटरनल पायलट ने भी देख लिया था. तो बाहर से जब यूनिट से आते हैं तो वो लोग जो है उसको लेने आते हैं, जहाज को जब लेते हैं तो उसको एक दो परीक्षण करते हैं. उसका इंजन का टेस्ट है, रेट ऑफ क्लाइंब टेस्ट है, उसके रोटेबल्स का, रेडार का सिस्टम, ये सब सिस्टम वो चेक करते हैं. तो कोस्ट गार्ड के एक पायलट आए तो उन्होंने जो है जहाज को उड़ाया और एक उतरते ही कह दिया कि ये बहुत बड़ा स्नैग है जी, इसमें लैंडिंग गियर जो है इसका, उसका लाइट जो है वो नहीं आ रहा है. जब हमें लैंड करना है तो लैंडिंग गियर को एक्सटेंड करते हैं, उसकी टांगे नीचे करते हैं ताकि हम उसको लैंड कर सके. अब ये जो है बहुत ही बड़ा स्नैग माना जाता है, मेजर स्नैग, क्योंकि इतना चेक करने के बाद पूरे जहाज को, तो इसमें हमारे जो ऑफिसर्स थे उनकी भी रेपुटेशन बड़ी स्टेक पे थी. और जो HAL वगैरह जहां की जहाज बनता है वो भी एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो लोग भी साहब जो है बहुत परेशान के साथ, ऐसा स्नैग कभी आया नहीं. तो एकदम उनकी तरफ से एक रिएक्शन आया कि नहीं जी, ये जो है पायलट, इनका जो है ससुराल सब कानपुर के नजदीक है, वो यहां 2-3 दिन रहना चाहते हैं, इसीलिए बड़ा स्नैग दे दिया कि आप लगे रहोगे 2-3 दिन और इसी तरह जो है उनका समय निकल जाएगा. बट सिचुएशन है, लेकिन आपको उसको काम से देखना है. अब वो HAL का पूरा टीम भी अगेंस्ट, हमारे ऑफिसर्स भी, मेरे जूनियर सब अगेंस्ट के, नहीं साहब ये पायलट जो है इसको जो है लेट अस टेक इट टू दी, यू नो, पुट हिम टू द वॉल एंड. लेकिन ऐसा नहीं है, हमको जो है उसने एक स्नैक दिया है, उसको पूरी तरह चेक करना है. सो कामनेस से उसको, हमने जहाज को क्या 1 घंटा उसको टेस्ट किया, जैक पे लगाया 50 बार मेरे अपने सामने जो है उसको अप डाउन करके, और देखा भाई कि ये जो है इसकी लैंडिंग की जो जैसे लैंडिंग का गियर ऊपर हो रहा है तो उसके साथ उसका लाइट जो है वो ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक आदमी को कॉकपिट में उठाया, एक आदमी बाहर है, तो 50 बार मैंने अपने सामने उसको दोबारा चेक कराया और एक बार भी वो त्रुटि नहीं निकली। तो मुझे ये कन्विंस हुआ कि ठीक है, इसका मतलब वो स्नैग नहीं है, ये जो बोल रहे हैं कुछ हो सकता है उस चीज की ये हो। तो पायलट से बात की, मैंने कहा भाई ठीक है, हम जहाज क्लियर कर रहे हैं, आप उड़ाओ और इस बार मैं इस जहाज में खुद बैठूंगा, क्योंकि हमारा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट था जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है। तो फाइटर एयरक्राफ्ट में तो सिर्फ पायलट बैठते हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें केबिन में हम लोग भी बैठ सकते हैं और वो परमिशन वगैरह लेके, तो हमने खुद बैठे। मैंने कहा आप चलिए, मैं बैठूंगा, सबसे पहले कुछ होगा तो मुझे होगा, क्योंकि मैं पहले कॉन्फिडेंट हुआ, उसको चेक किया, उसके बाद कॉन्फिडेंस के बाद में वो जहाज हमने उड़ाया और लखनऊ अलाहाबाद वहां का चक्कर लगाते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम वगैरह चेक करना होता है। सारे चेक करने के बाद मैंने पायलट को कहा 5 बार 6 बार जब तक करना चाहे करिए, एक भी बार वो प्रॉब्लम नहीं आई और उसी दिन हमने उस जहाज को रवाना कर दिया। सो सिचुएशन एक चैलेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि सब लोग अगेंस्ट हो गए और वो एक सिचुएशन, एक मैं कहूंगा कि विवाद वाली सिचुएशन आ गई थी और उस विवाद को हमने बड़ी भली भांति समझाया। तो ये दूसरा मंत्र मैं बोल रहा हूं, कोई भी सिचुएशन हो, मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन आप भी इंजीनियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत डेली रूटीन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोऑपरेशन नहीं मिलता स्टाफ से या टॉप ब्रास से कुछ ऐसी डिमांड्स आ जाती हैं विच आपको जो है नहीं समझ आता है। तो मुझे लगता है कि काम रहते हुए चैलेंजेस के साथ साथ उसको हैंडल करना, दैट इज द सेकेंड मंत्र विच आई फील हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तीसरा जो चीज जो है, एज यू ग्रो, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं ऊपर, तो आपको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सर्कमस्टांसिस। ये बहुत आसान है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, मैं किसी सर्कमस्टांस को निकालूं, बोलूं भाई मैं ये इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, उसकी वजह से ये है। ये तो बहुत आसान है, कुछ भी हो आप अपना किनारा कर लीजिए, निकल जाइए, ये जो एटीट्यूड है वो नहीं। अगर आपको अपना इनर लीडर और रियर लीडरशिप जो है, सेल्फ लीडरशिप आपको अपनी जागरूक करनी है। सो जिस भी सिचुएशन में, जिस भी पोस्ट पे, जिस भी पद पे आप काम कर रहे हैं, हमेशा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और उसको लीजिए, और कभी भी उसको सर्कमस्टांसेस ढूंढने की, ब्लेम गेम करने की उसकी जिम्मेवारी मत करिए। छोटा सा मैं आपको इसमें भी एक उदाहरण देता हूं, मुझे पता है समय जो है थोड़ा सा ये है, मैं थोड़ा और 2 मिनट में इसको खत्म करता हूं। सो एज ए डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, आजकल गवर्नमेंट जो है बहुत इस पे वो है कि रिफॉर्म्स लाइए और लोगों को, इंडस्ट्री को और वो दीजिए पावर, ताकि जो है ज्यादा ज्यादा कंट्रोल कम किया जाए। तो हमारी भी ये सिचुएशन थी कि कम आदमियों से ज्यादा काम किया जाए, जो सरकार का वो रहता है खर्चा कम किया जाए। और इसी सिचुएशन में जब मैं 5 साल महानिदेशक के पद पर रहा, तो मेरे साथ भी एक डिपार्टमेंट है जो हमारा काउंटर पार्ट जो आर्मी को देखता है, तो यही हुआ। बट हमने उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, हमने ब्लेम नहीं किया, हमने उल्टा काम अपना इतना बढ़ाया और नई फील्ड एस्टेब्लिशमेंट 8-10 खोली, काम इतना बढ़ाया कि ये सिचुएशन आ गई कि वहां जो नए सेंटर खुले, वहां मैंने आदमी नहीं मांगे उनसे, उनसे कहा भाई ठीक है मेरे जो अभी हमारे पास जो वर्क फोर्स है उसी से हम काम चलाएंगे, बाद में 5 साल बाद हम इकट्ठा मांगेंगे। और ये सिचुएशन में हमने 7-8 नए जो है फील्ड ऑफिसेस खोले, उससे एक तो पहले लोग जाके वहां पर टीडी पे जाते थे टेम्परेरी ड्यूटी में, वहां इंस्पेक्शन करते थे, वो सब बचा, और उसका काम भी जो है जब आदमी अब रेजिडेंट हो वहां पर तो डेफिनेटली वो काम भी बढ़ता है। तो हमारे डिपार्टमेंट में मेरी इसके बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसी उनके घर में भी जाके मुलाकात की, और हमने ये किया कि जहां बाकी डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथ कम हुई है 30-40%, हमने अबाउट 10% स्ट्रेंथ बढ़ाई। तो हमने जिम्मेदारी लेते हुए ये नहीं देखा कि ब्लेम गेम के, ठीक है सरकार का वजन है तो हमने जो है स्ट्रेंथ कम कर दें, क्योंकि काम जो है मिलिट्री एविएशन का वो हम उससे जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं छुपा सकते। एक जहाज जो है 500 करोड़ का है, और अगर एक ऑफिसर ने अच्छा काम नहीं किया तो वो जहाज के साथ साथ पायलट भी जाता है, और वो पायलट की तो कीमत हम लगा ही नहीं सकते। तो एक जो मैं कहना चाहूंगा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सर्कमस्टांसेस। लास्ट चौथा जो वो है, इंस्पायर थ्रू वैल्यूज नॉट जस्ट वर्ड्स। एज ए इंजीनियर इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर प्रोफेशन। हमारी देश में, खासकर हमारी कंट्री में, यूरोप में जाएं या यूएस में जाएं, द वर्ड करप्शन इज नॉट अवेलेबल, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ करप्शन, बट हम लोग जो है इससे भली भांति हर एरिया में जो है करप्शन। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो बच्चे कह रहे थे करप्शन क्या होता है. मैंने कहा अच्छा आपको देते हैं, तो बाय चांस मेरे पास रिजर्व टिकट नहीं थी, टीटी आया तो मैंने उनको बताया तो पहला करप्शन कहां से शुरू होता है. तो दोनों बच्चों को मैंने सिखाया कि कैसे करप्शन को मर्ड किया. तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है. एज ए इंजीनियर साइंटिस्ट आई थिंक वी आर बहुत ही जो है इस मामले में इंजीनियर्स की इमेज इंटीग्रिटी के मामले में बहुत ही खराब है, पर्टिकुलरली हमारे देश में. मुझे लगता है ये चौथा मंत्र हम ऑल इंजीनियर्स ट्रू टू अवर प्रोफेशन ये हमें फॉलो करना चाहिए. एंड अनलेस आप वो वैल्यूज नहीं लाएंगे डाउन द लाइन सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा, आपकी लीडरशिप जो है वो एक्सपर्ट नहीं बनेगी, ना आप इनर लीडरशिप में पहुंच पाएंगे. सो दैट इज द फोर्थ आई फील. ये चार चीजें मैंने आपको बताई. रिस्पॉन्ड रेदर देन रिएक्ट, रिमेन कॉम एमिड्स चैलेंजेस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सर्कमस्टांसिस, एंड इंस्पायर थ्रू वैल्यूज नॉट जस्ट वर्ड्स. खोखले वर्ड से काम नहीं चलता है. और इन चीजों को फॉलो करने पे व्हाट आई कुड डू, आई हैव क्लैरिटी इन अवर थिंकिंग, स्टेबिलिटी इन अवर इमोशंस, प्यूरिटी इन अवर इंटेंशन एंड बैलेंस इन अवर एक्शंस. सो ये अगर हम अलाइनमेंट अचीव करते हैं तो उसमें जो है नेचुरली हम एफर्टलेस सस्टेनेबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट कर पाते हैं. और व्हेन वी लीड अवर सेल्स इफेक्टिवली नेचुरली हम लोग जो है अपनी टीम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और सोसाइटी को लीड कर सकते हैं. टेकिंग एनालॉजी फ्रॉम माई फील्ड ऑफ एविएशन, हमारे एविएशन में एक जहाज को चलने के लिए वो ग्रेविटी के अगेंस्ट चलता है क्योंकि इंजन की पावर है. उसी तरह हम इंसान जो है हमें राइज करना है अबव चैलेंजेस बिकॉज ऑफ इनर स्ट्रेंथ. सो ये इनर स्ट्रेंथ जब हम ले लेते हैं तभी हम राइज कर पाते हैं. सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड एंड आई थैंक वंस अगेन दी ऑर्गेनाइजर्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए. मैं सिंसियरली एक्नॉलेज करता हूं ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को जिनका काम जो है प्रमोटिंग पीस एंड वैल्यूज, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स थ्रू राजयोगा एंड सपोर्टिंग ग्लोबल वेलबींग, दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग. 140 कंट्रीज में ये जो है कार्य हो रहा है. और एज हम लोग इस रिट्रीट को जो बिगिन कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा आप सब पार्टिसिपेंट्स को कि बी ओपन टू द न्यू प्रस्पेक्टिव्स, एंगेज एक्टिवली, सभी सेशंस में अच्छी तरह एक्टिवली एंगेज करें, रिफ्लेक्ट डीपली विद इन, अपने अंदर को झांके और प्रैक्टिस जो भी हम लर्न कर रहे हैं यहां पर उसको प्रैक्टिस किए. लेट अस यूज दीज डेज नॉट एज ए रिट्रीट बट एज ए टर्निंग पॉइंट, ए स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग बेटर लीडर्स, बेटर प्रोफेशनल्स एंड बेटर ह्यूमन बीइंग्स. वंस अगेन आई विश द कॉन्फ्रेंस ग्रेट सक्सेस एंड आई अलॉन्ग विद माई वाइफ डॉक्टर सविता यू शैल बी लर्निंग विद अदर फेलो डेलीगेट्स एंड लुक फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस. धन्यवाद. ओम शांति.
आदरणीय भाई साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है. आप जानते हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में राजयोग मेडिटेशन सेंटर के रूप से सर्वविदित है. यहाँ की राजयोग की विद्या बहुत ही अलग है. जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हमें योगासन, प्राणायाम आदि का इम्पोर्टेंस समझ में आता है, ऐसे ही मेंटल वेलबींग के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास प्रतिदिन करना अति आवश्यक है. तो हमारे बीच पानीपत से आए हैं राजयोगिनी आदरणीय ज्योति बहन जी. आप बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, पिछले 33 वर्षों से आपने अपने जीवन को समर्पित किया है. तो मैं आदरणीय ज्योति बहन जी से अनुरोध करती हूँ आप थोड़े समय के लिए हमें आवाज से परे ले जाएंगे एक बहुत सुंदर शांति की अनुभूति की ओर. ज्योति बहन. ओम शांति. ओम शांति. जगत नियंता सर्वशक्तिवान, सम्मानित मंच और आप सभी आबू पर्वत में आए हुए प्रभु प्रेमी परमात्मा की बगिया के रूहे गुलाब. आप सब कौन है? रूहे गुलाब. आपका टाइटल क्या है? रूहे गुलाब. चार दिन अपने आप को रूहे गुलाब बोलना है और रूहे गुलाब की तरह खिले हुए रहना है. कैसा होता है गुलाब? कैसा होता है? कैसा होता है? खिला हुआ, मुरझाया हुआ? अच्छा कौन सा गुलाब लगता है? ओरिजिनल या आर्टिफिशियल? ओरिजिनल. हम ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल? हम ओरिजिनल हैं। तो मैं रूहे गुलाब हूँ, ये मेरा खुद का स्वमान है, ये मैंने खुद को दिया है। राजयोग का मतलब ही होता है स्वमान में रहना। कोई मुझे स्वमान दे, वो अंजलि दीदी ने कहा ऐसे नहीं करना, मांगना नहीं है। मेरा स्वमान क्या है? मैं रूहे गुलाब हूँ, खिला हुआ हूँ, खुश हूँ, खुशियाँ बांटता हूँ। तो राजयोग का मतलब ही होता है खुश रहना और खुशियाँ बांटना, राजी रहना और दूसरों को राजी करना। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना, स्टेबल रखना, यही राजयोग है। जैसे अभी बताया कि शांति, शांति, सुकून, आनंद, खुशी, सुख, कितने अच्छे शब्द हैं, लेकिन केवल शब्दों में ही ये शब्द हैं। अगर ये मेरे अंदर आ जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरे को फॉरएवर राहत मिले, सुकून मिले, आनंद मिले, शक्ति मिले, उसके लिए ही यहाँ राजयोग जो आप अगले 3 दिन करेंगे। तो राजयोग के अभ्यास के लिए हमें खुद को जगाना होगा, है ना। आज का थीम है हमारा अवेकनिंग इनर मास्टर। तो मैं खुद को जगाऊं, खुद को रोज खुद से पूछूं, आज मेरी खुशी बरकरार रही, आज मेरा आनंद बरकरार रहा, किसी की बातों में मेरी मुस्कुराहट मुरझाइश में तो नहीं बदल गई। जब आप खुद खुद को पूछेंगे, खुद खुद का लीडर बनेंगे, तो आप इस विश्व के लिए कुछ कर सकेंगे। तो राजयोग का मतलब है स्वयं को मान देते हुए अपने पर कार्य करना। तो हम यहाँ पर जो आए हैं, अपने पर कार्य करने आए हैं, और अपने पर जो कार्य करेगा वो विश्व के लिए एग्जाम्पल भी बनेगा, सैंपल भी बनेगा, और परमात्मा की आशीर्वाद का पात्र भी बनेगा। आज दिन तक हम जो भी करते आए हैं वो दूसरों के लिए करते आए हैं। सोचते हैं तो दूसरों के लिए, करते हैं तो दूसरों के लिए। वैसे जीना भी औरों के लिए चाहिए, खुद के लिए जिए तो क्या जिए। लेकिन अगर खुद ही जीना नहीं आता होगा तो दूसरों के लिए भी हम जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा स्टेबल रहना, खुश रहना, शक्तिशाली होकर के रहना। उसके लिए कुछ एक चीजें हमें अपने आप से पूछनी है। मैं किसका हूँ? किसका हूँ? भगवान का हूँ, उसका हूँ, उसका हूँ। वो कौन है? वो मेरा है। कौन है? सर्वशक्तिवान है। वो कौन है? वो शांति का दाता है। वो कौन है? वो खुशियों का भंडारी है। मैं किसका हूँ? मैं उसका हूँ। बार बार अपने आप से यह प्रश्न पूछना है, मैं किसका हूँ? और खुद को क्या जवाब देना है? मैं उसका हूँ। वो कौन है? खुशियों का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, और वो मेरा है, वो मेरा है। जब हम अपने आप से रोज ऐसे बात करेंगे, अपने आप से पूछेंगे, तो वो सुकून भरी जिंदगी, वो राहत, वो आनंद जिसकी आज हम तलाश में रहते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आने लगेगा। तो अपने आप को उसी तरह जगाना है जिस तरह महावीर अपनी शक्तियों को भूल गए थे। उनको जामावत ने जगाया था, तुम पवन पुत्र हो। जैसे ही वो जगे तो कितना भारी समुद्र उन्होंने क्रॉस किया, कितनी सारी बीच में सिचुएशन आई, उन्होंने बहुत इजीली उनको हैंडल किया। सो दैट इस संसार में कितनी भी परिस्थितियां, कितनी भी आपदाएं आए, हम सब उसे इजीली फेस कर सकते हैं, बेशर्ते हम खुद को जगाते रहें, हम होश में रहे, हम बेहोश ना हो। तो चलिए 3 मिनट हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि इसका विस्तार तो आप सुनेंगे ही आगे 3 दिन में। आंखें खोल के ही बैठेंगे, बंद नहीं करनी है, और सामने पॉइंट ऑफ लाइट को देखेंगे। मन ही मन विचार कीजिए, मैं बिल्कुल एकांत स्थान पर अपने में मगन हूं, अपनी मस्ती में, अपने से ही बातें करें। मैं कौन? मैं इस संसार में परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूं। मैं महान आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं खुश नसीब हूं, मैं शांत हूं, स्थिर हूं, मैं भगवान का हूं, भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, मैं भगवान का बच्चा हूं, वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो शांति का दाता है, मैं शांत हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, मैं भगवान का हूं, भाग्यवान हूं, मैं खिला हुआ गुलाब हूं, मेरी सारी चिंताएं, मेरे सारे बोझ प्रभु अर्पणम, वो मेरा है, मेरे सारे बोझ लेने आया है, मुझे जगा रहा है, बार बार कह रहा है तुम मेरे हो, जागो, खुद को पहचानो, होश में आओ, तुम मेरे बच्चे हो, भगवान के बच्चे, खुश नसीब, खिले हुए गुलाब, आनंदमय, शक्तिशाली, मन ही मन 3 बार रिपीट करेंगे, मैं शांति दाता की संतान, शांत चित्त हूं, मैं शांति दाता की संतान, शांत चित्त हूं, मैं शांति दाता की संतान, शांत चित्त हूं, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने शांति का गहन अनुभव किया ही होगा और यही अनुभव अगले 4 दिनों में आप और अधिक से अधिक करते रहेंगे। अब मैं अनुरोध करती हूं हमारे मध्य आज के सम्मान्य अतिथि सम्मान्य बहन दीपिका उपाध्याय जी हैं, सेक्रेटरी जनरल इंडो श्रीलंका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आप नोएडा से विशेष हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं आप मंच पर आएं और अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखें। सम्माननीय बहन दीपिका उपाध्याय जी।
भारतवर्ष कि इस कर्म भूमि पर, इस पावन ज्ञान सरोवर के हार्मनी हॉल में मंच पे समस्त महानुभाव मंचासीन लोगों को मेरा शत शत प्रणाम। और मेरे भाई बहन जो इस हार्मनी हॉल में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको मेरा सादर नमस्कार। In the serene presence of spirituality and collective wisdom, we gather here not just to listen, but to reflect, to connect and to transform. Today, I'd like to speak about something very powerful, yet often overlooked, awakening the inner leader within each of us. When we hear about the word leader, we often imagine someone is in a very position of authority, like a CEO, maybe a political leader, or maybe a team head. But true leadership doesn't begin with a title. It begins with a mindset, a sense of responsibility, and the courage to act when it matters. So what does it mean to awaken the inner leader? Ek choti si ghatna main aapko batati hoon jo ki 10 saal pehle mere saath ghatit hui. Uttar Pradesh ke Bureaucratic Wives Association ka ek chota sa trust medical welfare jiska naam Avivira Foundation tha, kuch in mahan स्त्रियों के द्वारा बनाया गया था. उसकी मैं फाउंडर मेंबर थी. हम लोग बहुत ही घमंड में थे. मैं 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ. बहुत ही घमंड में थे. ऐसा था कि ब्यूरोक्रेटिक वाइफ्स एसोसिएशन की ये जो यूनिट है, हमारा एक्सेस हर जगह बहुत आसानी से हो जाएगा. और हुआ भी. और काफी मेगा लॉन्च किया हमने इसको. और हमने अपने प्रिजनर्स के लिए जेलों में काम किया, मेडिकल वेलफेयर से रिलेटेड. हमने अपने महिला कांस्टेबल के लिए ऑन स्पॉट कैंसर डिटेक्शन टेस्ट का काम किया. फिर हमने धीरे धीरे अपने सिपाहियों के लिए भी काम किया. फिर क्या, जिन चीजों को जो हमें आसानी से मिलती गई, हम बहुत घमंड के साथ उसको करते गए, चलते गए. लेकिन कितने और प्रोजेक्ट हम करते. सारे लोग बड़े निराश थे. एक प्रोजेक्ट मैंने प्रपोज किया समस्त अपनी यूनिट के लोगों के साथ. वो ये था, अर्न वाइल यू लर्न. गांव के 12वीं पढ़े बच्चों को हम लोग, जो साइंस साइड से पढ़े हुए थे, हम उनको पैरामेडिकल क्लासेस कोर्सेज एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके और उन बच्चों को हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे. विचार में मेरे ये था कि मुझे कंबल नहीं बांटने, मुझे बिस्किट नहीं बांटने. किसी भी गांव का घर का एक बच्चा अगर मैं उसको पढ़ा लिखा के थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दूं, तो शायद वो अपने पूरे परिवार को बहुत ही अच्छे से खींच लेगा. प्रोजेक्ट बहुत ही आराम से सुनाया और बहुत ही ताव में मैंने ये प्रेजेंट किया, बट उसको बंद करा दिया गया ये कह के कि पैसे कहां से आएंगे. पैसे तो थे नहीं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. और अगर ब्यूरोक्रेटिक वाइफ्स एसोसिएशन की लेडीज अगर जाके इन संस्थाओं से, जो भी उनके शहरों में थी, अगर हम उनसे इस भले काम के लिए भी मांगेंगे, तो एक टैग लग जाएगा. कुछ ऑफिसर्स वर्किंग थे, कुछ ऑफिसर्स नहीं भी थे. मुझे तब समझ में नहीं आया. और दीदी, तब रूहे गुलाब नहीं था मेरे दिमाग में. आज वो शब्द रूहे गुलाब अपने अंदर डाल के, मैं सच बताऊं, मैंने हिम्मत नहीं हारी. मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक बहुत ही करीबी मित्र विम्मी वाजपेयी, जिसके हस्बैंड पुलिस में ही थे, उसके साथ मिलके मैंने कहा कि मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए और मैं पायलट प्रोजेक्ट करके ये दिखाना चाहती हूं. हमने एक पूरा उसका स्केच रेडी किया. ग्राम प्रधानों को हमने अप्रोच किया, ग्राम प्रधानों के जो गांव में कांटेक्ट थे, ताकि वो उनकी ज्यादा अच्छे से सुनते समझते थे. 15 गांव के लोगों को हमने बुलाया. शाहजहांपुर वो शहर था जहां पे हमने ये किया काम. हमने उनको समझाया कि हम इन बच्चों के लिए करेंगे. वो लोग तैयार भी हो गए. हमने कुछ लोगों को बच्चों का IQ टेस्ट कराने के लिए रिक्वेस्ट किया बिना किसी पैसे दिए हुए. मैंने कहा इसकी भरपाई बाद में होगी. वो भी हुआ. उसके बाद अब हमारे बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए रेडी तो हो गए, बट उनकी पढ़ाई का खर्चा कहां से आएगा? पढ़ाई का खर्चा मैंने उसी शहर के 10 स्कूलों को अप्रोच किया और हर एक स्कूल से बोला, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूं मैं, जिसमें 1300 से 1500 बच्चे थे, और हर स्कूल से मैंने बोला कि आप एक बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी लें, 3 साल का कोर्स है, उधम सिंह यूनिवर्सिटी है एक, वहां से हमारा टाइप था, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चों को हमारे साथ जोड़ रहे थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हर स्कूल के हर बच्चे से मात्र 20 रुपए हमने लिए, सिर्फ साल में एक बार। पैसे इकट्ठे हुए, 10 तो नहीं, 7 बच्चों के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों 8 महीने पैरामेडिकल क्लासेस उधम सिंह यूनिवर्सिटी में उन्होंने पूरी की। अब थ्योरी कैसे की हो, थ्योरी क्लासेस कैसी हो, बिकॉज उन्होंने बोला कि थ्योरी क्लासेस के लिए बच्चों को अस्पताल में, नर्सिंग होम में, छोटा बड़ा जो भी हो, मिनिमम 15-बेडेड हॉस्पिटल में उनको रखा जाएगा। कोई बात नहीं, जोश भी था उस समय। नर्सिंग होम्स एसोसिएशन को बुलाया, उनको बोला कि मैं आपको एक बच्चा देती हूं जिसका सिर्फ घर से आने जाने का खर्चा आपको देना होगा, सैलरी भी नहीं होगी, और आपको मैं फुटफॉल एक गांव का दिलाऊंगी। डॉक्टर्स का यही था, जब मैंने उनको ये सारा समझाया तो उन्होंने बोला कि भाई हम क्यों करें। तो उनके लिए भी फुटफॉल आना, एक गांव के बच्चे को अगर आप ट्रेन कर रहे हो 4 महीने के लिए, और वो फुटफॉल आता है और उन बच्चों को आगे प्रोग्रेस कराता है, तो इससे विन विन सिचुएशन क्या थी। डॉक्टर को फुटफॉल मिला, बच्चे को ट्रेनिंग मिली, यूनिवर्सिटी ईवीएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंतर्गत उसने एक बच्चे को पढ़ाया, स्कूल को रिकग्निशन दिलाई गई, टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए, उस स्कूल को रिकग्निशन मिली, और एक बच्चा, उस समय 10 नहीं 7 बच्चे हमने इस तरीके से पैरामेडिकल कोर्सेज के द्वारा और ये पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाया। कोई पैसा नहीं लगा, स्कूल डायरेक्ट फीस यूनिवर्सिटी को देता था, अभिवीरा फाउंडेशन को नहीं चाहिए था। और जैसे ही ये 7 प्रोजेक्ट हमारे बढ़े, इसके आगे हमारा रास्ता खुल गया। सो आगे बस इतना ही कहना चाहूंगी, सेल्फ अवेयरनेस, टेकिंग इनिशिएटिव एंड इन्फ्लुएंस, नॉट अथॉरिटी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया चलेगा। सेल्फ अवेयरनेस, लीडरशिप स्टार्ट्स विद अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस एंड योर वैल्यूज। जहां हमें इन चीजों का एहसास होता है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इनिशिएटिव लेना, परमिशन नहीं है किसी के लेने की, लीडर्स प्रोएक्टिव होते हैं। जब हमें स्टेप अप करना होता है, जब कहीं कुछ गड़बड़ हो, हम स्टेप अप करें, क्योंकि तभी लोग बैकआउट करते हैं। एंड इन्फ्लुएंस करना है, अथॉरिटेटिव नहीं बनना। और आजकल के इस दुनिया में किसी को भी फॉलोअर नहीं चाहिए, सबको वही चाहिए जो दिल से सोचता है, जो कर गुजरने की हिम्मत रखता है और हर सिचुएशन में अग्रणी रहता है। इसी के साथ मैं इस आप सबसे धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद।
थैंक यू सिस्टर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आपने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए और जिसका रिजल्ट बहुतों को बहुत अच्छा ही मिला। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हमारे बीच भिलाई से पधारे राजयोगिनी परमादरणीय आशा दीदी जी हैं, जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं। कहते हैं बड़ों के आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो आज हम आदरणीय दीदी जी से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। आदरणीय दीदी जी, पिछले 52 वर्षों से अपने जीवन को विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित किए हुए हैं, 52 ईयर्स। इंदौर जोन की एक वरिष्ठ दीदी के नाते से पूरे जोन की सेवाओं की देखरेख आप कुशलता से कर रहे हैं। भिलाई सबजोन के आप सबजोन इंचार्ज हैं, मातृत्व पालना की धनी है, हिम्मत दृढ़ता की धनी है। कहते हैं हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। तो हमने आदरणीय दीदी जी के अंग संग रहकर महसूस किया है, दीदी में वो जज्बा है, वो दृढ़ता है, जिसके आधार पर हर मुश्किल कार्य को दीदी अति सहजता से संपन्न कर लेती है। तो मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय दीदी जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की धरणी में अपनी सेवाएं दी हैं, सेवाओं हेतु आपका विदेश भी जाना हुआ है, तो देश विदेश में लाखों लोगों के अंदर के आध्यात्मिकता को जगाने का आपने बहुत ही सेवा की है। तो मैं दीदी से अनुरोध करूंगी आप हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करेंगे, और मेरा अनुरोध रहेगा दीदी को माइक कृपया वहीं पर दे। आप सभी को एक बैच मिला हुआ है, अनुरोध रहेगा कि आप परिसर में, परिसर से बाहर जाएं तो आप वो बैच अवश्य ही लगाए रखें। यदि आप किसी कारणवश बिना बैच के परिसर से बाहर जाते हैं तो परिसर के अंदर आने में आपको असुविधा हो सकती है, कृपया इसका ध्यान रखें। आदरणीय बड़ी दीदी जी,
ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानीय अतिथि भ्राता संजय चावला जी, हमारी सम्मानीय बहन दीपिका जी तथा हमारे इस विंग के चेयरपर्सन और सारे कार्य के कर्ता धर्ता आधार स्तंभ हमारे भ्राता मोहन सिंगल जी तथा हमारी अति स्नेही अंजलि बहन, ज्योति बहन और मन संचालन कर रही हमारी अस्मिता बहन, और हमारे इस विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे भ्राता भारत भूषण जी तथा सभा में उपस्थित आप सभी अलग अलग स्थानों से आए हुए हमारे अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। आज जो हमारा टॉपिक है इनर लीडरशिप, अवेकनिंग इनर लीडरशिप, इनर लीडर, इनर लीडर कौन है, और हम सब यही चाहते हैं कि हम लीडर रहे, हमारे अनुसार सब चले, हमारा परिवार चले, हमारे जब सब ऑर्डिनेट्स है, हमारे जो संगी साथी, वो सब हमारे अनुसार चले, लेकिन हम क्या अपने अनुसार चलते हैं? क्या मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे अपने स्वभाव, मेरी अपनी आदतें क्या मेरे अनुसार है, क्या वो मुझे पसंद है? तो हमें सबसे पहले स्वयं का लीडर बनना होगा। हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, अथाह शक्ति है, क्योंकि हम किसकी संतान हैं? जैसे आज कोई एक मंत्री का बेटा होता है उसको भी बहुत नशा होता है, मैं फलाने मंत्री का बेटा हूं। किसी बड़े अधिकारी का बच्चा होता है उसको कितना नशा होता है, मैं फलाने अधिकारी का बच्चा हूं। तो हमें भी तो ये नशा है, हम किसके बच्चे हैं? रोज भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहा मात पिता हम बालक तेरे,
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, और परमात्मा कौन है? वो तो सर्वशक्तिवान है, तो उसके बच्चे हम कौन है? इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन सिर्फ विस्मृति यही है मूल कारण, जो हमें अपने आप को याद दिलाना है और जगाना है। तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं कि एक स्थान पर एक प्रतियोगिता हो रही थी और उसमें बहुत सारे भाग लेने वाले लोग थे, और उसमें ये कहा गया था कि एक पत्थर था, उसको एक वार से तोड़ना था। बहुत लोगों ने अपनी शक्ति अजमाई परंतु तोड़ने में सफल नहीं हुए। एक दुबला पतला सा एक साधारण सामने व्यक्ति भाई आता है, एक वो राजपूत होता है, तो वो अपने जो आयोजक है उनको कहता है कि मेरे साथ एक व्यक्ति और आएगा। तो कहा नियम तो ये है कि एक ही व्यक्ति को वार करना है, एक वार में तोड़ना है, तो दूसरा तो नहीं आ सकता। कहता नहीं, वो आएगा लेकिन वो सिर्फ खड़ा रहेगा, उसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कहा ठीक है, वो व्यक्ति साथ में खड़ा बना, दूसरे व्यक्ति को बुलाया और वो साथ में खड़ा रहा। तो वो उनके भाट और चारण होते हैं जो उनके यश गाथा को गाते हैं। अब उसने गाना शुरू किया कि आज तो तुम्हें महाराणा प्रताप देख रहे हैं, राणा सांगा देख रहे हैं, तुम्हारे खून, तुम्हारे नसों के अंदर वो राजपूत का खून बह रहा है, तुमने तो ये कमाल किए, ये करामतें की है, इतने बड़े बड़े कार्य किए। बस बस उसने कहा और एक वार किया, पत्थर का टुकड़ा हो गया। तो क्या शक्ति पहले उसके पास नहीं थी? शक्ति तो वही थी ना, लेकिन वो शक्ति जागृत हुई। ऐसे ही जैसे हनुमान जी को याद दिलाया तुमने क्या क्या किया है, वो स्मृति आ गई। ऐसे आज हम सबको भी ये स्मृति आ जाए कि हम कौन हैं, हम किसकी संतान हैं और हमें क्या कार्य करना है। तो आज ये अंदर से अगर हम जागृत हो जाएं, तो आज हम संसार को जगा सकते हैं, हम सारे संसार का कल्याण कर सकते हैं, और हम अपने भारत को तो अवश्य विश्व गुरु बना ही सकते हैं। इतनी ताकत हम सबके अंदर है, हम सब मिलकर के सहयोग दें तो ये कार्य कोई मुश्किल नहीं है। तो हम सब भाई बहनों को अपने आप को जागृत करना है, जो अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत कर हमें अनेकों को जगाना है। आप ये कार्य इस यहाँ पर आए हैं हमारे ज्ञान सरोवर परिसर के अंदर, आप विगत आने वाले 3 दिनों में बहुत अच्छी तरह लाभ लें, अपने आप को पहचाने कि इनर कौन है जिसको हमें जगाना है, और हमें अपने आप को लीडर बनाना है। हमारी कर्म इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा स्वभाव सब हमारे अपने अनुसार हो। जब हम अपने अनुसार अपने आप को चलाएंगे तो हमारे अनुसार सब चलेंगे। तो यही हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि हम सब ऐसे अपने को शक्तिशाली बनाकर जाएं। ओम शांति।
आदरणीय आशा दीदी जी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। आप सभी मेरे साथ करेंगे, मैं बाहर गई, करिए। मैं बाहर गई और बिखर गई, मैं भीतर गई, मैं भीतर गई, मैं भीतर गई।
अगर तरना है तो क्या करना है? तरना है तो क्या करना है? भीतर जाना है। और यही ब्रह्मा कुमारी सिखाती है और यही प्रेरणा हमने आदरणीय दीदी जी से प्राप्त किया। मैं वर्तमान अनुरोध करूंगी हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार भारत भूषण भाई जी, जो मात्र 16 साल की आयु से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, आप सिविल इंजीनियर हैं, 1987 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं पानीपत में दे रहे हैं। पानीपत में ज्ञान मान सरोवर एकेडमी, जो 5 एकड़ की जमीन में एक बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर बना है, जहां लगभग 1000 लोग बैठ सके वैसा बहुत सुंदर ऑडिटोरियम बना है, आप उसके डायरेक्टर हैं। 50 से भी अधिक देशों में आपका ईश्वरीय सेवा अर्थ जाना हुआ। आपने अनेकों डिजास्टर अवेयरनेस कैंपेन्स में भाग लिया है। और आदरणीय भाई साहब ब्रह्मा कुमारी इस पानीपत सब जोन के चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप उमंग उत्साह के धनी हैं, आप सदा उमंग में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग दिलाते हैं। तो मैं आदरणीय भाई साहब को अनुरोध करूंगी, आप सभी को धन्यवाद प्रदान करेंगे आदरणीय भाई साहब।
ओम शांति। आज के सभा में विराजमान हमारे माननीय अतिथिगण, भ्राता संजय चावला जी, डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिसेस दीपिका उपाध्याय जी, सेक्रेटरी जनरल इंडो श्रीलंका। मुझे खुशी ये हुई, बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जो भी गेस्ट आते हैं काफी लंबे लंबे थ्योरेटिकल लेक्चर लेकर आते हैं। आज हमारे दोनों गेस्ट ने बिल्कुल सुंदर एक्सपीरियंस बेस अपने एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किए, इसलिए उनका मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूं। कैसे चुनौतियों का सामना किया संजय जी ने भी बहुत सुंदर सुनाया, और बहन दीपिका जी ने भी कितने बच्चों का और कितनों गरीब लोगों का दीपक जगाया, रियली बहुत बड़ा काम किया दीपिका बहन, आगे भी करते रहेंगे, हमारी शुभकामनाएं। भ्राता मोहन सिंगल जी, आप ने सबने सुना होगा उनका परिचय, चेयरपर्सन केवल साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के नहीं है, लेकिन सच पूछें तो हमारे माउंट आबू में वो इस वक्त वरिष्ठ भ्राता, जो बड़े 2-3 हैं, पिता श्री ब्रह्मा के टाइम के फाउंडिंग स्टोन, उनमें से आप हैं, उनके लिए खूब तालियां बजाएं। ना केवल साइंटिस्ट इंजीनियर विंग में, सभी विंग आपको आमंत्रित करते हैं, सब में जितने प्रोग्राम नीचे ऊपर सब तरफ होते हैं आपका वक्तव्य रखा जाता है। यहां दुनिया भर के लोग सारा वर्ष आते हैं, और शायद ही कोई कार्यक्रम हो भ्राता मोहन सिंगल जी का उसमें क्लास स्पीच ना रखा, तो आप पालना का बहुत प्रैक्टिकल विष्णु का पार्ट बजा रहे हैं, खूब आपके लिए तालियां बजाई जाएं। बहन आशा दीदी जी, वाइस चेयरपर्सन, जो सदा भिलाई से पधारी हैं लेकिन सदा भलाई का काम करती रहती हैं, वो सचमुच एक हमारी विंग में बहुत ही प्रेम भरी पालना का आपका पार्ट है, आएंगी सबके लिए बहुत प्रेम भरी प्रसाद क्या सौगात क्या 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 इतने दिल से उनके निकल रहा होता है, क्या ना मैं सब गेस्ट को भी सबको शुभ भावनाएं शुभकामनाएं खूब उनके ऊपर बारिश करूं। तो आप सबके आशाओं का दीपक जगाने वाली ऐसी आशा दीदी का भी मैं खूब खूब अभिनंदन धन्यवाद। और त्रिमूर्ति हमारी एक से बढ़कर एक, ज्योति बहन ने सबकी ज्योति जगाई, वो जो बहन कह रही थी ना भीतर गया तर गया, तो वो भीतर ले गई थी ज्योति बहन, जो सही आपको पहुंचाया। अंजलि बहन ने ज्ञान का अंजन पहनाया आज के टॉपिक पे, और ऐसमिता बहन तो ऐसमित बड़े सुंदर सुंदर तरीके से मन संचालन किया। इन त्रिमूर्ति दीदियों का भी हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं, और सबसे ज्यादा आप सब जो खास आए, कितना दूर दूर से, कब से आपका प्लानिंग बना, सब कुछ रिजर्वेशन किया, कहीं बीच में ऑब्स्टेकल्स आई, उनको क्लियर किया, कैसे भी करके आखिर भगवान की सिलेक्शन माला में आप पहुंच गए, आप सबका खूब खूब धन्यवाद। मैं केवल दो शब्द सुनाते हुए जो आज विशेष लिखा है, उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु आंतरिक निपुणता, मतलब आप समझ गए ना, जो आज का विशेष जो इनर मास्टरी पर खास ये जो सेशन जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो कैसे हमारे अंदर आवे, वो चीज बहुत आप सबके अंदर इच्छा होगी, ठीक है ना भाई साहब। बीच में संजय चावला जी मंत्र देता हूं, एक मंत्र दो मंत्र, तो मैं भी आपको इसके लिए एक मंत्र दे देता हूं, दे दूं, जैसे इनर मास्टरी में तो परफेक्ट हो जाएंगे, सबसे संबंध अच्छे हो जाएंगे, स्वयं का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, मेडिटेशन भी सही लगेगा। उसके लिए एक चीज है कि खासकर जो आपके घर में जिनसे डेली वास्ता पड़ता है, चार पांच लोग होते हैं ना, माता पिता बच्चे और पत्नी है, सास ससुर जो भी हैं, और ऑफिस में भी ऑफिसर हैं, सबॉर्डिनेट हैं, कम से कम एक बार दिल से रियलाइज करके उनकी कोई स्पेशलिटी आप उन्हें कहें, क्या आप बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे, कितना ऐसा बोल रहे आप बहुत अच्छे हैं, फिर तो नहीं कहने वाले, क्या कहेंगे, दिल से कहेंगे, और डेली एक बार कहना है, कम से कम जो कहते कहेंगे, दोनों हाथ ऊपर खड़े करो, अरे वाह बॉस, कैमरा उधर भी घुमा लेना भाई जी, थैंक यू, इन सब के लिए ताली बजाओ, ये आपका मंत्र काम करेगा। आज रात्रि भोजन से पहले ही घर में फोन करना, क्या सुनो मुझे ना आपको एक बात बताने की, क्या आप ना बहुत ही अच्छे, आप देखो इसका क्या रिजल्ट निकलता है, हा? मतलब बहुत ही सुंदर, एक लेडी बहन ने ऐसे किया, अपने बेटे को कहा, बेटे मुझे एक बात बतानी है आपको, कि क्या आप बहुत अच्छे, मम्मी तो मेरे से भी 100 गुना अच्छी हो। फिर घंटे बाद पति को किया, सुनो मुझे आपको एक बात बतानी है, क्या आप ना बहुत अच्छे, अच्छा तुझे आज ही पता लगा है मैं बहुत अच्छा, क्या नहीं मैं आज ना एक क्लास में लिया, अब मैं डेली कहूंगी, फिर तो ठीक जगह पहुंच गई है, 4 दिन और लगा के आना। तो इसलिए मंत्र काम करेगा, अभी भी जो लेफ्ट एंड राइट में बैठे ना, एक बार प्यार से मुस्कुरा के कहो, आप ना बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, आपको 3-4 दिन यहां है ना, ये काम करते रहना, भोजन पे जाओ कोई जा, पर दिल से कहना, भाई लोग खासकर ध्यान रखना, घर में जाके पत्नी को ये नहीं कहे, सुन तू बहुत अच्छी है फटाफट चाय ला, दिल से कहना, रियली तुम कितना घर को मैनेज करती हो, कमाल है, रियली यू आर ए ग्रेट, ओके। एक तो ये मंत्र है, दूसरा जो आज का टॉपिक है ना, ये हमारी हर वर्ष थीम जो लॉन्चिंग हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल, विश्व नव निर्माण के लिए ये थीम है, इस वर्ष इसी के अंतर्गत सारे कार्यक्रम चलेंगे, कॉन्फ्रेंस भी इसमें इसी के अंतर चल रही है, अंतर्गत जो है। इसके लिए मैं आपको सच बताऊं, मैं 77 में ज्ञान में आया, उस वक्त मजाक उड़ाते थे ये छोटी छोटी बहनें, कहती हैं विश्व नव निर्माण, सतयुग लाएंगे, व्यसन मुक्त बना देंगे, बहुत सुंदर, लोग बहुत हंसी उड़ाते थे, हाँ। लेकिन आज वो पोजीशन नहीं है, एक जंगल में एक आग लग गई, एक छोटी सी चिड़िया, सरोवर था वहां, चोंच भरा और जाके डाला, फिर भरा फिर डाला, इतने 40 साथी आए सरोवर में प्यास बुझाने, चिड़िया दीदी क्या कर रही हो, कि मैं वो जंगल में आग लगी और फिर भरी, सब ठाका मार के हंसे, अरे तेरी चोंच भर पानी से वो आग बुझेगी क्या, जाते जाते कहा मुझे नहीं पता आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, परंतु जब इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों। सभी शर्मशार हो गए, अरे मॉरल ड्यूटी क्या बनती है, कितनी बड़ी शिक्षा दे के गई है। तो सब ने 40 के 40 साथियों ने सूंड भरी और जाके फिर वहां डाली, फिर भरी फिर डाली, फिर भरी फिर डाली, आग बुझ गई। मैं पूछता हूं आग किसने बुझाई, किसने बुझाई, बुझाई तो हाथियों ने, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन बनी, चिड़िया। तो प्रैक्टिकल वही बात, कभी भले मजाक उड़ाते थे, आज इन सफेद वस्त्रधारी बहनों को आगे वो हाथी थे, हजारों महारथी, डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, ऑफिसर क्या, पॉलिटिशियन क्या, सब जुड़ गए हैं इस कलयुगी दुनिया में। विकारों की आग लगी है ना, उसको बुझाने के लिए, इसलिए अब तो आग बुझेगी बुझेगी, पक्का बुझेगी। तो ये प्रैक्टिकल, उसके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है। 3 दिन में एक भी सेशन मिस ना करना, क्योंकि साइट सीन के लिए तो आपका अलग टाइम रखा हुआ है, क्योंकि क्या पता उसी सेशन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है। बड़े अच्छे अच्छे वक्ता आएंगे, और मेडिटेशन का सेशन तो बिल्कुल मिस ना करना, प्रैक्टिकल आपका दीपक जग जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।
सभी का धन्यवाद करने वाले हमारे आदरणीय भारत भूषण भाई जी का भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपको आदरणीय भाई साहब को सुनने का अवसर पुनः प्राप्त होगा। अभी 1 मिनट परमात्मा की याद में परमात्मा का धन्यवाद करते हुए हम कार्यक्रम को संपन्न नहीं कर रहे हैं। इसके बाद की तैयारी हम शुरू करेंगे, ईश्वरीय उपहार वितरण के लिए तैयारी होगी। आपके लिए 2 ऑप्शन है, एक लक्ष्मी नारायण का ये फोटो फ्रेम है और दूसरा ये डायरी और पेन है। तो आपको जो लेना हो इसमें से कोई भी एक चीज आप ले सकते हैं। तो आप पहले ही बता दीजिएगा आपको डायरी चाहिए या आपको फोटो फ्रेम चाहिए, ताकि जो सौगात देने के लिए यहाँ बैठेंगे वो आपको आपकी इच्छा के प्रमाण सौगात वितरण कर सकेंगे। हम सभी इस अवेकनिंग द इनर लीडर सत्र के समापन की ओर है। हमारे आदरणीय मेहमान संजय चावला जी को हम ईश्वरीय उपहार दे रहे हैं। आप आए, आपने अपना अमूल्य समय निकाला, आपका तहे दिल से बहुत 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 दिल से आभार है। आदरणीय बहन दीपिका जी, आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पर ईश्वरीय उपहार वितरण करने की अरेंजमेंट्स हो जाए। भाई इस साइड से आएंगे और आप अपने जूते चप्पल नीचे उतार के ही आएंगे, और आपको उपहार लेकर इसी साइड से वापस जाना है। और बहनें उस साइड से आएंगी, चप्पल नीचे उतार के आने का कष्ट करेंगे, और इधर से उपहार लेते हुए आप पुनः उसी साइड से प्रस्थान करेंगे। आप सीधे जाएंगे भोजन के लिए, भोजन करेंगे, और जैसा कि आपको बताया था प्रयास करेंगे रात को सोने से पहले क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ जी, गुड नाइट मेडिटेशन की आदत आज से ही डालेंगे। बाबा के कमरे में जाएंगे, मेडिटेशन रूम में जाएंगे, थोड़ा टाइम परमात्मा का धन्यवाद करते हुए मेडिटेशन करेंगे।